Can start or for the talk. ओम अग्नियानुतिमेदांत से ज्ञानांजनों शलाक्या चक्षुरोन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन मुदा स्वयं रूपकदामयं ददाते सुदान्तिकं येशुकृष्णं चैतन्य प्रभु नित्यानं स्वद्वैतगदाधर श्रीवासदे गौरभक्तवृन्दे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. सो इट वॉज अ गुड डिस्कशन वी वर डूइंग about varnashram and char varna ke liye karke aur char ashram bhi hai aisa hi nahi ki keval varna char ashram ko bhi hame follow karna chahiye brahmachari jo shuddha brahmachari hota hai wahi aage jaake acha grihastha ban sakta hai aur pehle se usko brahmachari ka training nahi milta hai to grihastha ke badle grihmeethi ban jayega wo. तो प्रॉपर गृहस्थ बनने के लिए ब्रह्मचारी बनना अच्छा है. और गृहस्थ ब्रह्मचारी में से आता है तो उसको पता है कि केवल 25 साल के लिए उसको ये गृहस्थ जीवन को फॉलो करना है, आगे जाकर उसको इसको त्यागी करना है. ये भी बात सही है कि वानप्रस्थ सिस्टम आज इस्कॉन में इतना बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं है. ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन इतना अधिक फैला हुआ नहीं है. तो वो भी आगे जाके इसको भी हमें लागू करवाना चाहिए. तो अल्टीमेटली ये वर्णाश्रम सोसाइटी जब क्रिएट होगा समाज के अंदर, तभी जाके समाज को एक दिशा मिलेगी आगे बढ़ने की. थोड़ा ये डिसऑर्गेनाइज हो गया पूरा अभी, लेकिन वो तभी ऑर्गेनाइज हो पाएगा. दैट वुड बी इजियर. और ऐसा भी नहीं है कि केवल कृषि को रक्षता उसकी ही ट्रेनिंग की आवश्यकता है और ब्राह्मण को ब्राह्मण ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, या फिर हमें आर्मी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है. एक्चुअली ये क्षत्रियों को भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जैसे क्षत्रिय के गुण क्या कैसे होते हैं, रूल कैसे करना है, शासन कैसे किया जाता है, और धनुर्विद्या क्या होती है, ब्रह्मास्त्र कैसे प्राप्त किया जाता है, लाइक दिस ऑल दिस जो क्वालिटीज वो भी चाहिए. किसी एक चीज पर हम अटक नहीं सकते, आप न्यूट्रली देखना पड़ता है कि चारों वर्ण और चारों आश्रम की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, ना कि किसी एक वर्ण की ट्रेनिंग चाहिए. सबकी ट्रेनिंग चाहिए, वी रिक्वायर ऑल द ट्रेनिंग्स. सो इस तरह से मनुष्य सिद्धि तक पहुंच सकता है, दे कैन रीच टू द लेवल ऑफ सक्सेस. अभी ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कोई व्यक्ति अगर इसको ऐसा मान ले कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, या फिर मैं गुण और कर्म के आधार पर ब्राह्मण हूँ, भगवान बताए मैं यजन याजन पठन पाठन यज्ञ करता हूँ, यज्ञ कराता हूँ, शास्त्र पढ़ता हूँ, शास्त्र पढ़ाता हूँ, तो इस तरह से मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैं केवल मेरे क्वालिटीज को ही ध्यान में रख के काम करूंगा और वही चीज को आगे बढ़ाऊंगा, उसके अतिरिक्त मुझे और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है. अगर वैश्य भी ऐसा सोचता है कि भाई मेरा तो गौरक्षा अच्छा हो रहा है, कृषि अच्छी हो रही है, बस अब बाकी सब तो गौण है, बाकी सब तो मिथ्या है, कोई उसका कोई उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वो गलत बात है, वो बात भी गलत है. क्योंकि इसका भगवान ने ब्लॉक कर दिया यहाँ पर. ये चार वर्ण बताने के बाद भगवान ने कंडीशन अप्लाई चार वर्ण बता दिया. इसका अर्थ यह नहीं कि भगवत गीता बंद करके भाग गए. अभी आगे के लोग जो है उसके आधार फर्दर श्लोकास विल लेट अस नो कि व्हाट कृष्ण वांट्स, जस्ट नॉट फॉलो वर्ण. भगवान ऐसे नहीं है कि आधी बात छोड़ चले जाते, भगवान पूरा बात बताते हैं. यू नो ही इज वेरी क्लियरली मेंशनिंग व्हाट ही इज. भगवान का आधा बात नहीं सुनना चाहिए. कई बार भक्त लोग ऐसा सोचते हैं कि हम भगवान ने कहा है वो सब कर रहे हैं. कुछ लोग सोचते हैं कि नवदा भक्ति का अर्थ होता है मॉर्निंग प्रोग्राम ओनली, मंगला आरती करो और गुरु पूजा तक का मॉर्निंग प्रोग्राम होता है तो वो हो गया. लेकिन उसमें श्रीमद् भागवतम की सुनना भी होता है, तो वो नवोदय भक्ति इज इंक्लूडिंग द फुल पैकेज, यू कैन नॉट पिक एंड चूज। कृष्ण के बताए गए सिद्धांतों में, शास्त्रों में आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे अच्छा लगता है तो मैं ले लूंगा, मुझे उसमें इसमें मेरा दिमाग काम नहीं करता है तो वो छोड़ दो। यू कैन नॉट डू हाफ चिकन लॉजिक कि मुर्गी आगे से खाती है तो उसको दाना रखो आगे का, पीछे का हटाओ। दीज आर ऑल यूजलेस थॉट्स। इसलिए हमें अपने आप को इस प्रकार के विक्टिम नहीं बनाने चाहिए कि मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं वही करूंगा, बाकी दूसरा है जो वो मैं नहीं करूंगा। When Krishna says to do this, that means you have to accept entirely. You cannot just sarva dharman pratyajya, Bhagavad Gita band karke bhage, dekho Bhagavan ne kaha hai sab dharma chhod do. Ab koi Bhagavad Gita padhne ki avashyakta nahi, Bhagavan khud bol rahe ki sare dharma chhod do. Are bhai aage to padho ki maam ekam sarvam, wo bhi to bola hai. So this we should try to understand. You cannot just select some part of it and other part you miss. So, टेक्स्ट नंबर 44 तक हमने चारों वर्ण का क्वालिटीज हमने समझा कि चार प्रकार क्वालिटीज। अब भगवान बताते हैं इसमें कैसे व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है। पढ़िए टेक्स्ट नंबर 45।
अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है।
भगवान यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया कि इफ यू फॉलो एग्जैक्टली व्हाट योर क्वालिटीज आर, उसके आधार पर देन ओनली यू कैन रीच द सिद्धि परफेक्शन, जो कृष्णा बताना चाहते हैं। अब भगवान इस सिद्धि को या रिजल्ट को कैसे प्राप्त किया जाए इसके विषय में नाउ कृष्णा विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट। नाउ यू सी टेक्स्ट नंबर 46 से आपको पता पड़ेगा कि वर्ण बताने के पश्चात भगवान का उद्देश्य क्या है। पढ़िए टेक्स्ट नंबर 46।
जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है।
यस, सो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये वर्ण का पालन भले ही तुम करो, लेकिन उद्देश्य वर्ण का पालन करना नहीं है, इसका क्वालिटी का पालन करना है। दिस इज नॉट द उद्देश्य, यू नो समटाइम वी फॉरगेट दिस कि उद्देश्य ये नहीं है। भगवान बहुत स्पेसिफिक बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति कहेगा कि देखो भगवान भी खुद कह रहे हैं कि समदम तपसौचम, तो ये क्वालिटी को डेवलप करना चाहिए। यस, करना चाहिए, लेकिन उद्देश्य केवल क्वालिटी को डेवलप करना नहीं है। कोई कहता है कि देखो भगवान कह रहे हैं कि कृषि गौरक्षा वाणिज्य, तो कृषि गौरक्षा ही करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ करना चाहिए, लेकिन ये उद्देश्य ये नहीं है। इसका जो मूल लक्ष्य है वो ये नहीं है, लक्ष्य है उस भगवान की उपासना करके स्वकर्मणा तमभर तमभ्यर्च, ये है, ये उद्देश्य है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च, उनको ऑफर करना, तम अभ्यर्च, दिस इज द पॉइंट, दिस पॉइंट वन शुड नॉट मिस्टेक इट, नहीं तो क्या होगा, वो लटक जाएगा, वो उसका जो उद्देश्य है वो भूल जाएगा और उसके इसके अंदर फंस जाएगा। और जब इसके अंदर फंस गया और ये मेन उद्देश्य भूल गया तो आसुरी वर्णाश्रम हो जाएगा, वो देव वर्णाश्रम के बदले। भगवान यहाँ पर देव वर्णाश्रम के विषय में बात कर रहे, आसुरी वर्णाश्रम के विषय में बात नहीं कर रहे। अगर आप भगवान को हटा दिया वर्ण में से, या फिर भगवान को यू नो 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को रख लिया, तो वो आसुरी वर्णाश्रम में बदल जाएगा। इसलिए जो भक्तों इसका प्रचार करते हैं या जो भक्त इसको पालन करते हैं, इनको ये चीज को ध्यान रखना चाहिए कि देखो ये चीज भूलना नहीं कभी, अगर ये भूल गए तो सारे जीरोस बन जाएंगे और वन निकल जाएगा, तो यूजलेस हो जाएगा सब। तो वन तो हमेशा रखना चाहिए, ये जीरोस नहीं होंगे। यही रामानंद राय भी इस विषय में यही कहते हैं, चैतन्य चरितमृत का पढ़ेंगे कभी, ये जीरो नहीं होंगे तो भी चलेगा, अगर अकेला वन होगा तो। लेकिन अगर लोग केवल जीरो को फॉलो करेंगे और वन को हटा देंगे तो वो तो केवल बर्बादी है। लास्ट पैराग्राफ पढ़िए।
प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है, अतएव जो जिस कर्म में लगा है उसके फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। यदि यह इस प्रकार से कृष्ण भावनामय होकर सोचता है तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही जीवन की सिद्धि है। भगवान ने भगवत गीता में 12.7 में कहा है, तेषाम समुद्धता, परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। यही जीवन को सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे जिस वृत्ति परक कार्य में लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है।
Yes, so we can hear it, like Prabhupada ने बहुत स्पष्ट specifically बोला है, इस paragraph को miss नहीं कर सकता कोई, कि कोई चाहे जिस वृत्ति परक कार्य होता है, उसके स्वभाव के अनुसार, उसके गुणों के अनुसार उस कार्य में लगा है, लेकिन उसका सफलता यहाँ पर निर्भर करता है कि यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो this is the condition. Otherwise, you just focus on the qualities only, and you just think on how you can improve your qualities only, you know, then you are missing the link, you are missing the main point. Then then it will be difficult for you. You should not miss the main point. Bhagwan ye chahte hai ki Vaishnav, हर एक व्यक्ति वैष्णव बनना चाहिए। भगवान भगवत गीता में कहते हैं भक्तोस्मि में, अर्जुन तो मेरे भक्त हो इसलिए मैंने भगवत गीता कहा, और भगवान भी मद भक्त ऐसा भी कहते हैं, मद्याजी माम नमस्कारो मन मना भव मद भक्त। जब मद भक्त की बात आती है तो वैष्णव के जो 26 गुण बताए गए हैं शास्त्र में, जो 26 क्वालिटीज है, वो भक्त की क्वालिटीज को एग्जिबिट करना चाहिए। जस्ट डोंट ट्राई टू समोदम तपसौचम, ये अच्छा है, ये 6 क्वालिटीज है वो अच्छी बात है, इट्स गुड, बट दिस इज नॉट योर अल्टीमेट गोल। कृषि गौरक्ष वाणिज्य ये अच्छा है, बट दिस इज नॉट योर अल्टीमेट गोल। अल्टीमेट गोल इज मत भक्त, मेरा भक्त बनो, भगवान ये चाहते हैं। ट्राई टू, सो वन शुड ट्राई टू कल्टिवेट द एंटायरली becoming devotee, not just partially. And if you are not able to do this, purisas nahi karte, then at least minimum you develop this. So idea is not to stop here. Yeah. Jo uddeshya hai, wo yahan par ruk jana nahi hai. Uddeshya hai ki samne lakshya clear hona chahiye. To ye Bhagwan kehte, Vishwanath Chakravarti Thakur iske vishay mein kehte hai ki manushya apne niyat kartavya karma ke madhyam se अगर भगवान की सेवा करता है और उसको मन को भगवान के चरणों में लगाता है, तभी उसको स्वाभाविक जो पूर्ण ज्ञान है वो प्राप्त हो सकता है। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति तभी हो सकती है। लाइक अभी तक भगवान ने परमात्मा ब्रह्म का ज्ञान के विषय में अभी बता रहे, एक एक करके भगवान बता रहे कि पूर्णता का ज्ञान की पूर्णता कैसे सिद्ध की जाती है। Now he is talking about that, the perfection of knowledge. But लेकिन यहाँ पर बलदेव विद्याभूषण एक प्रश्न उठाते हैं कि अगर समझ लो कि यदि कोई व्यक्ति एक वर्ण के गुण और उसके स्वभाव धारण करता है, उसके पास एक वर्ण का गुण है और उसका स्वभाव है, लेकिन उसकी इच्छा होती है कि दूसरे वर्ण के जो कर्तव्य है उसका पालन करें, अर्थात वो ब्राह्मण उसका क्षत्रिय उसका क्वालिटी वगैरह है, लेकिन उसको इच्छा है कि मैं ब्राह्मण का क्वालिटी या वैश्य का क्वालिटी प्राप्त करूं, या फिर वो क्षुद्र का तरह कर्तव्य का पालन करूं, तो इसके विषय में आपका क्या कहना है कृष्ण? तो अभी कृष्ण टेक्स्ट नंबर 47 में बताएंगे, पढ़िए टेक्स्ट नंबर 47।
अपने वृत्ति पूर्वक परक कार्य को करना चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते।
क्लियर। श्रेयां स्वधर्म विगुण, श्रेयां का अर्थ है श्रेष्ठ है स्वधर्म का पालन करना, विगुण अर्थात प्रॉपरली संपन्न नहीं होगा। समझ लो कि आप अपने स्वधर्म का पालन करने में यू आर नॉट परफेक्ट, आप श्रेष्ठ नहीं हो, लेकिन फिर भी उसका पालन करना अच्छा है। परधर्मात स्वनुष्ठिता, स्वनुष्ठिता का अर्थ है परफेक्ट, आप बहुत अच्छी तरह करते हो परधर्म, लेकिन फिर भी श्रेय है क्या, अपने निजी कर्तव्य का पालन करो। स्वभाव नियतम कर्म, जो स्वभाव के अनुसार कर्म किया जाता है, स्वभाव नियतम ऐसा कर्म करता है तो कभी भी कुर्वन नाप्नोति विकल विषम, इससे कभी पाप नहीं लगता। तो अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम आपका बुरा तो नहीं होगा। तो ये चीज प्रभुपाद भगवान खुद बता रहे हैं, वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट डोंट ट्राई टू डू अदर्स एक्टिविटीज। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए, पढ़िए पहला पैराग्राफ, एक ही पैराग्राफ, समान पैराग्राफ, ओके ये पढ़िए तो बीच में हम रोक देंगे, बोलिए।
भगवत गीता में मनुष्य के मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करें। उदाहरणार्थ अर्जुन क्षत्रिय था, वह दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहा था, लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराना की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, यदि वह ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं हो सकता है। कभी कभी व्यापारी कहता है, अरे मेरे ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता। अतः यदि व्यापारी यह कहता है कि वह कोई लाभ नहीं ले रहा है तो इसे एक सरल झूठ समझना चाहिए, लेकिन व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि वह ऐसे कार्य में लगा है जिससे झूठ बोलना आवश्यक है, अतः उसे इस व्यवसाय को त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। इसकी शास्त्रों द्वारा संस्तुति नहीं की गई है। चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र, यदि वह इस कार्य से भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। कभी कभी विभिन्न यज्ञों को संपादन करते समय ब्राह्मणों को भी पशुओं की हत्या करनी होती है, क्योंकि इन अनुष्ठानों में पशु की बलि देनी होती है। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय अपने कार्य में लगा रहकर शत्रु का वध करता है तो उस पर पाप नहीं चढ़ता है। तृतीय अध्याय में इन बातों की स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या हो चुकी है। हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए। निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण है। निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्ति हो और परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही कार्य करने का निश्चय करें।
Yes. तो यहाँ पर बहुत क्लियरली प्रभुपाद कहते हैं कि आप अपने जो कर्तव्य होते हैं उसको छोड़ करके दूसरे कर्तव्य के पास मत जाओ। ब्राह्मण क्षत्रिय अगर ये सोचते हैं कि अब मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा इसमें पाप लगता है, जैसे अर्जुन सोच रहा था कि मैं भिक्षा मांग के जीवन जीऊंगा, तो भगवान उस चीज को मना कर रहे हैं कि यू मेंटेन व्हाट यू आर डूइंग, आपका जो गुण है, आपका जो कर्म है उसको कंटिन्यू करो, उसमें पाप नहीं लगेगा। उस वो दोष के साथ क्या होगा तभी भी उसमें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसमें दोष ना लगे। हर एक कार्य में दोष लगता ही है, या क्योंकि दोष कैसे लगता है, या तो तमोगुण या रजोगुण या सत्वगुण, ये तीनों में से कोई एक गुण में तो कार्य होगा ही, इसके कारण दोष लगना तो स्वाभाविक है। अब उसके विषय में कृष्ण कहते हैं टेक्स्ट नंबर 48 में, पढ़िए।
एक क्वेश्चन है ब्रो,
आप पूछिए।
टेक्स्ट 4788 के खुद का कार्य करना चाहिए, इफ इट इज इम्परफेक्ट देन नॉट टू इमिटेट और डू और एक्सेप्ट अदर अदर्स ऑक्यूपेशन, देन फ्रॉम स्क्रिप्चर्स देयर आर फ्यू एग्जांपल्स दैट जस्ट लाइक विश्वामित्र मुनि, ही वाज अ क्षत्रिय, सॉरी
दे आर एक्सेप्शनल,
हां यस, और Pashuram, because Pashuram was there for a specific purpose, his incarnation. So, I mean,
Vishwamitra and Parshuram, they are not ordinary people. They are exceptional people. But it is not possible for everybody. Arjun, agar ye soche ki Vishwamitra Kshatriya the, Raja Kaushik, to the Kshatriya, lekin unhone chhod diya, sab ko Brahmin ban gaye. But that was not the entire case. You know, agar if we just take that particular example, Vishwamitra ka hi example use kare, to Vishwamitra ne apna rajpat choda tha ek proper uddeshya ke saath. Unhone ye dekha tha ki inke brahmarshi Vasishth itna brahmarshi hai, itna bada brahmarshi, to uske paas itni sab suvidhaye hai, to mujhe kyun nahi ye suvidha hai? Bas ye suvidha prapt karne ke liye brahmarshi ke साथ कंपटीशन करने के लिए, वशिष्ठ के साथ कंपटीशन करने के लिए राजा कौशिक ने अपना सब कुछ त्याग किया था, यू नो, एंड परशुराम जहां तक है वो तो भगवान के अवतार ही है स्वाभाविक रूप से, तो ही वाज ब्राह्मण, लेकिन जब समाज में क्षत्रिय के नाम पर पशु हत्या बहुत बुरी तरह से बढ़ गई, इसलिए सदय हृदय दर्शित पशु कहा था, सदय हृदय उनके हृदय में बहुत दया आई, इसलिए उन्होंने अपना कर्तव्य छोड़ के उसको चले, अदरवाइज कृष्ण पर्सनली इसको अप्रूव नहीं करते कि ऐसा करना चाहिए, कृष्ण तो ऐसा ही कहते हैं कि दीज आर एक्सेप्शंस बट इन जनरल प्रिंसिपल वन शुड नॉट डू दिस।
ओके, और इन सेकंड जस्ट थॉट किंग सेकंड ऐसा ही हो सकता है कि इफ यू आर डिबेटिंग विथ मे बी एथिस्ट और someone who is not willing to accept, then वो भी कह सकता है कि well I am doing my own occupation duty, what's the problem in that, why you are saying that मैं जो कर रहा हूँ वो, you know, it's not all right then,
yeah, but then वो lines स्वकर्मणा तमुद्यर्च्य सिंधिम आहवा, अगर आप नियत कर्तव्य करते हो लेकिन स्वकर्मणा तमुद्यर्च्य तो तमुद्यर्च्य कहाँ पर, you know, यह करोशि यदस्नासि तो होना चाहिए ना, अगर वो नहीं हो सकता है तो आपके स्वकर्म का समय वही केवलम, अगर आप कुछ भी करते हो लेकिन अगर आप पादयते यदि रतिम, आप भगवान के लिए इसको शरणागत नहीं करते, भगवान की शरणागति में अपने कर्म को नहीं रखते, देन दे आर श्रम, दे आर यूजलेस लेबर, वो गधा भी काम करता है फिर तो, इसलिए प्रभुपाद ने बताया तीसरे अध्याय में कि जो परपट ने बताया ना कि यज्ञ के लिए कर्म करना ये मूल उद्देश्य है, अन्यथा तो कोई कहता है कि कर्म ही करना है तो बंदर भी कर्म करता है ना, वो भी कूदता रहता है छलांग मारता रहता है, तो उसको क्या कर्म करना बोलेंगे, वो कर्म करना नहीं है, वो गधा भी कर्म करता है। Yes.
प्रभु जी अभी के समय में जैसे आई मीन मोस्ट ऑफ द पीपल आर मोस्टली इन पैशन एंड इग्नोरेंस इन नेचर और वो ज्यादातर शूद्र की तरह ही काम करते हैं, तो हम अपनी क्वालिटीज को किस तरह से जान के किस तरह से अपना कार्य सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग अपने जो गुण या कर्म है गुण है उसी के मुताबिक कार्य ले रहे हैं, जो काम हाथ में आया वो ही कर लेते हैं, ऐसे ही होता है, तो ये नॉलेज को हम किस तरह से अभी के समय में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
हाँ, इसलिए अभी के समय में हमें केवल यही सोचना चाहिए कि भगवान ने भगवत गीता का जो मुख्य सार क्या है वो प्रस्तुत किया है, मन मना भगवत भक्तो वाला, तो पहले हम कम से कम इस लेवल तक तो आ सकते हैं कि हम भगवान के शरणागत यत करोसी तक तो पहुंच सकते हैं, फिर चाहे कुछ भी करते हो, यत करोसी दस नासी यत जो सी, तो यहाँ तक तो हम पहुंच सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान कहता है कि पत्रम पुष्पम फलकम, सब कुछ भक्ति होना चाहिए, तो इसलिए आज के समय में हम अपने आप को कहाँ पर रख सकते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसके लिए ज्यादा चिंता करने से पहले हम कम से कम इतना चिंता कर ले कि हम भगवान की बात को पहले समझे तो सही कि भगवान क्या कहना चाहते हैं भगवद गीता में। इसलिए हमें, मैं हमेशा भक्त को कहता हूँ कि आप अपने कर्म को निश्चित कर सकते हो, लेकिन एक बार सुनो भगवद गीता क्या कहते हैं, श्रीमद भागवतम क्या कहते हैं। कई बार भक्त लोग कहते हैं कि श्रीमद भागवतम हम जानते क्या बताए, लेकिन ये इतना बोलने से नहीं होता है। श्रीमद भागवतम बहुत गहरा है, इसको जानने के लिए किसी साधु की, किसी वैष्णव की सहायता लेनी पड़ेगी, तब जाके आप समझ पाएंगे। वैष्णव इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर कमेंट्रीज, कि प्रॉपर का तात्पर्य हो कि सहायता लेनी पड़ेगी, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट श्रीमद भागवतम इज। तो इसलिए उसके बाद से स्वाभाविक रूप से भगवान ये भी कहते हैं कि हर एक मनुष्य को चाहिए कि अपने निजी कर्तव्य के लिए अपना आध्यात्मिक गुरु से परामर्श किया जाए। वो भी भगवान बताते हैं, वो व्यक्ति तुम्हें बताएंगे कि तुम जीवन की सिद्धि कैसे पर, क्योंकि उन्होंने तत्व का दर्शन किया है। इसलिए गुरु के सामने जाकर के अपने आप को प्रस्तुत करना और ये बताना कि मेरे लिए क्या आदेश है, तो वो, क्योंकि यहाँ पर भी भगवान इसी विषय में आप आगे पढ़ेंगे ना, इसमें आएगा यही चीज कि भगवान ये वर्ण आश्रम के कंसेप्ट को बताने के उसका उद्देश्य क्या है वो आगे आएगा। जिस तरह से अर्जुन ने भगवान का आदेश पालन करने के लिए युद्ध किया वो इम्पोर्टेंट, ना कि युद्ध करना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन भगवान का आदेश पालन करना इम्पोर्टेंट है। अभी आदेश पालन में युद्ध आ गया तो दैट इज बिकॉज ऑफ क्षत्रिय मेंटालिटी लाइक दिस। सो द पॉइंट हियर इज दैट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट कृष्ण सेज टू डू दैट इज इम्पोर्टेंट, नॉट दैट व्हाट क्वालिटी यू हैव। अगर आपकी इच्छा है कि भाई मुझे तो प्रभु जी धनुष बाण ही अच्छा लगता है, आप जो भी बोलो, आप बोल तो किसी को खत्म कर देना है, बस ये कर सकता हूँ। बाकी आप बोलो कि ये तुम बैठ के माला करोगे या फिर ये भागवत पढ़ो, ये सब हमसे नहीं होने वाला, हम तो वही करेंगे। सो दिस इज नॉट द आइडियल सिचुएशन। सो एनी अदर क्वेश्चंस?
Okay, this will be applicable for everyone,
whoever it is, चाहे वो क्षुद्र हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, सबके लिए कॉमन रूप से। मिस, मैं ये कंसेप्शन दूर करना चाहता हूँ कि भक्त अगर ये सोच ले कि मुझे केवल इसको पकड़ के रखना है, बाकी कुछ नहीं, then is missing the main point. And the main point is not this. Main point is स्वकर्मणा तमभ्यर्च, भगवान को शरणागत होना, ये मेन पॉइंट है, दैट्स द पॉइंट। सो नाउ लेट अस सी व्हाट कृष्ण सेज इन टेक्स्ट नंबर 48।
प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, अतः हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोष पूर्ण क्यों ना हो, कभी त्यागे नहीं।
भगवान यहाँ पर धुएं का एग्जांपल दे रहे हैं, इज गिविंग एग्जांपल ऑफ स्मोक। सो जैसे अग्नि धुएं के द्वारा आच्छादित होती है, इस तरह से हर एक प्रयास, कोई भी कर्म हम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं दोष का स्पर्श तो होता है। इसलिए उसका कर्तव्य ये सोच के नहीं त्याग करना चाहिए कि इसमें तो दोष है। ब्राह्मण सोचेगा कि इसमें दोष है, इसमें तो अहंकार आता है, या क्षत्रिय सोचेगा यहाँ तो मुझे हत्या करनी पड़ती है, वैश्य सोचेगा कि यहाँ पर तो मुझे झूठ बोलना पड़ता है कि मैं कोई धंधा पैसा नहीं कमा रहा हूँ आपसे, शूद्र सोचेगा यहाँ पर तो मुझे लेबर है। तो एवरीथिंग इज कंटामिनेटेड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो बलदेव विद्याभूषण से कि सारे निजी कर्तव्य स्वधर्म चाहे कोई भी हो वो दोष से आवृत है, सब में दोष है। इवन ब्राह्मण का जो कर्म है उसमें भी दोष लग सकता है। ये फॉल्टी पार्ट जो है, फॉल्टी पार्ट का अर्थ होता है कि दोष वाला जो हिस्सा है हमारे कर्म का, वो आप भगवान के चरण में अपने कर्म को अर्पण करके इससे मुक्त हो सकते। अगर आप देखिए स्वाभाविक रूप से भी अगर आप पैदल चलते तो बहुत सारी चींटियां मर जाती है, ये स्वाभाविक है। जैसे जैनी लोग कहते हैं, कोई एक संप्रदाय के लोग, वो लोग कहते हैं कि धुआं नहीं कर, अग्नि नहीं प्रगटाओ, ये फिर चलो नहीं उसे मर जाते। तो इस वेदों में भी इसका विधान है कि जीवात्माओं की जाने अनजाने से हमसे हत्या हो जाती है। बहुत सारी ऐसी गलतियां होती है कि आप जानते ही नहीं हो, वो अनजाने से हो रही है। तो इसके लिए पंच यज्ञ का निर्देश किया गया है कि मनुष्य हरेक गृहस्थ को चाहिए कि वो पंच यज्ञ करे। पंच यज्ञ का अर्थ है पांच यज्ञ करने पड़ते दिन में, वो एवरीडे करना पड़ता है, तभी जाके आप कर्म से मुक्त हो सकते हो। लेकिन कलयुग में इस यज्ञ का स्थान लिया है संकीर्तन यज्ञ ने, अर्थात यज्ञ वही विष्णु। यज्ञ का मूल उद्देश्य है कि विष्णु की सेवा में कर्म को लगाना। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, यज्ञ के लिए कर्म करो नहीं तो कर्म बंधन लगेगा। अभी जब भगवान ये कहते हैं लोकोयम कर्म बंधन, तो कर्म बंधन का अर्थ होता है चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, सबको ये कर्म बंधन लगेगा अगर वो भगवान को अर्पण करके कर्म नहीं करता। इसलिए अटेंशन दे करके, केयरफुल होकर के केवल आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति को लक्ष्य बना करके कर्म करना चाहिए। उसी तरह से ज्ञान की वृद्धि हो सकती है, अन्यथा वो नहीं हो पाएगा। निजी स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म का त्याग करने से तो अच्छा है कि मनुष्य अपने कर्म के द्वारा भगवान की सेवा करे, जिसमें वैराग्य अनासक्त होकर के भक्तिमय कार्य करना अच्छा है कर्म का त्याग करने से। भगवान यहाँ पर अगेन वही पॉइंट को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि कर्म का त्याग नहीं करना है, क्योंकि कर्म का दोष अपने आप चला जाएगा अगर तुम मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करते हो। प्रभुपाद बहुत सुंदर रूप से बताया तात्पर्य में 47 में कि एनीथिंग डन फॉर पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन, किसी भी कोई भी कार्य इंद्रिय भोग अपने निजी स्वार्थ के कारण अगर किया जाए, कोई भी कार्य चाहे वो भक्त करे या अभक्त करे, कोई भी करे, एनीथिंग डन फॉर पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन, निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य हो, सो दैट विल कॉज यू बॉन्डेज, वो बंधन करेगा, वो स्वाभाविक है, वो बंधन अवश्य करेगा। इसलिए प्रभुपाद ने बताया कि निष्कर्ष ये है कि जो जो स्वभाव, जो जो गुण हमने एक्वायर किया है, जिसमें हमारा, जिसमें हम अभी है वर्तमान में, उस आधार से हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए और परमेश्वर की सेवा करना उद्देश्य होना चाहिए। यही चीज श्रीमद् भागवतों में बताई है कि स्थाने स्थिता स्तुति कथाम, आप जहां पर हो जो करते हो डोंट चेंज इट, जस्ट डू इट फॉर मी, भगवान के लिए कार्य। स्थाने स्थितान श्रुति कथाम, वहां पर रहकर के आप सेवा करो, किस तरह से, अनुवाक मनोभीर, शरीर से, वाणी से और मन से, देन यू विल बी, आप अजीत भगवान को जीत सकते हो। जो जी अजीत है भगवान को, जो आप समझ नहीं सकते, ऐसे अजीत भगवान को आप जीत सकते हो। दिस इज श्रीमद् भागवतम से। सो अपने कर्म के आधार से भगवान की पूजा करने से मनुष्य ज्ञान में स्थिर हो जाता है। और फिर भगवान अभी आगे योगा लेटर के कुछ और स्टेजेस की चर्चा करते हैं। सो इज दिस क्लियर, वी कैन गो फॉर द टेक्स्ट नंबर 49।
जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है।
हाँ तो तात्पर्य पढ़िए.
सच्चे सन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है. क्योंकि वह परमेश्वर का अंश है, अतः उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए. यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है. जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है, वही वास्तव में सन्यासी है. ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है. इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता. वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद न लेने का आदि हो जाता है. सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है. लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है, वह बिना संन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है. यह मनोदशा योगारूढ़ या योग का सिद्धावस्था कहलाती है. जैसा कि तृतीय अध्याय में पुष्टि हुई है, जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है, उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रह जाता.
Yes. So, so here we see, यहाँ पर हमने देखा कि मनुष्य को चाहिए कि he should come beyond the attachment या आसक्ति से पर होकर के कार्य करना होता है. जो व्यक्ति जो ये योगा लेटर वाले को ये सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन कृष्ण भावना में जो स्थिर होता है वो पहले से ही सन्यासी होता है. उसको मैन्युअली ये सब करने की आवश्यकता नहीं रहती. तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इसके संदर्भ में कि जो पहले लेवल का सन्यासी होता है वो क्या करता है कि कर्म जो कर्ता बनने की जो भावना है वही वास्तव में कर्म करने का जो दोष है वो वहीं पर आता है कि वो कर्ता अपने आप को मानता है और उसके लाभ के लिए सोचता है. तो ये शुरुआत में सन्यासी इसको त्याग करता है, ये वृत्ति को त्याग करता है. लेकिन जैसे साधना में आगे बढ़ता है और योगा रूढ़ अवस्था तक पहुंच जाता है तो वो अंत में कर्म का त्याग कर देता है. जो असक्त बुद्धि सर्वत्र उसका वर्णन किया है इस श्लोक में, वो सेकंड स्टेज के संन्यास तक पहुंच जाता है, अर्थात योगा रूढ़ अवस्था तक पहुंच जाता है. योगा रुरुक्षु से योगा रूढ़ अवस्था तक पहुंच जाता है. इसलिए चाहे वो योगी कितना भी स्थिर हो, लेकिन उसकी अंततोगत्व उसकी जो परफेक्शन है वो ये आ जाता है कि वो कर्म के प्रति आसक्ति या कर्म फल के प्रति आसक्ति से वो अपने आप को मुक्त करता है. लेकिन जो भगवान का शरणागत होता है, जो भगवान का भक्त होता है, वो केवल ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करता जैसे ज्ञान अभी करता है, क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ये सब किया जाता है जो अभी हमने चर्चा किया वो सब. लेकिन भक्त के विषय में ऐसा कहा जाता है कि उसके सारे कर्म फल से इच्छा से रहित होकर के शुद्ध हो जाए और वो मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाए, वो ये मानना शुरू कर दे कि वो कर्ता नहीं है, तो वो उससे भी आगे जाकर के परमेश्वर सुप्रीम ब्रह्मन अर्थात भगवान की सेवा तक पहुंच जाता है. अर्थात वो -10 से 0 तक ज्ञान योगी लोग आ जाते हैं, लेकिन 0 से आगे वो भक्त जाता है. तभी ज्ञान योगी जो एडवांस आगे बढ़ा हुआ जो ज्ञान योगी होता है उसके इसमें 3 श्लोकों में भगवान बताते हैं. सुनिए उसके विषय में टेक्स्ट नंबर 50.
हरे कृष्णा.
हाँ जी बोलिए.
हाँ प्रभु जी, आपने जो दोबारा बोला ना वो रिपीट कीजिए. तो
कौन सा
अभी बोला ना वो?
मैं मैंने क्या बोला अभी?
बोला भगवान का भक्त।
अच्छा हाँ, सो भक्त जो होता है वो अपने कर्म के माध्यम से भगवान के शरणागत होता है और उसका केवल ब्रह्म साक्षात्कार तक सीमित नहीं रहता जैसे ज्ञानी करते हैं, किंतु एक भक्त अपने कर्म को शुद्ध कर देता है और मिथ्याहंकार से भावना से मुक्त हो जाता है और कर्म फल की आसक्ति से मुक्त हो जाता है, वो आगे बढ़ता है ब्रह्म रियलाइजेशन से आगे। क्योंकि ब्रह्म रियलाइजेशन में मनुष्य ज्ञान योग की सिद्धि को प्राप्त करके कर्म और कर्म के प्रति आसक्ति से मुक्त हो जाता है, लेकिन भक्त होता है वो आगे बढ़ता है उससे। ज्ञानी होता है या योगी वो माइनस 10, अगर आप मैथमेटिकल फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें माइनस 10 से प्लस 10 का अगर आप बनाए तो माइनस 10 से अगर वो ऊपर उठता है तो माइनस 9 माइनस 8, 7, 6 इस तरह से ऊपर ऊपर आते हैं, माइनस 1 फिर 0 और ऊपर जाएगा तो फिर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे होता है।
अच्छा,
तो ये लोग 0 तक पहुंच सकते हैं, वो लोग प्लस पे नहीं जाते, वो लोग केवल जो दोष वाला पार्ट है वो निकालते हैं, लेकिन एडिशन कुछ नहीं होता उसमें, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते वो लोग, लेकिन भक्त जो होता है वो आगे चला जाता है।
थैंक यू। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा बाबू।
हाँ जी बोलिए।
हरे कृष्णा।
बोलिए बोलिए।
प्रभु जी समझ में नहीं आया 49।
तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो आत्मसक्त आत्मसंयमी अनासक्त है एवं जो भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि, कर्म फल के संन्यास के अभ्यास के द्वारा कर्म फल से मुक्ति अर्थात वो ज्ञान योग की विधि को फॉलो करता है और वो ये समझ सकता है कि कर्म में दोष लगता है, ये कर्म में हर एक कर्म में दोष लगता है और इसलिए वो सोचता है कि कर्म फल में आसक्ति जो है उसका त्याग करता है। शुरू शुरू में वो कर्ता होने की जो भावना है उसका त्याग करता है कि मैं करता हूँ ये मेरे भोग के लिए, ये सब का त्याग करता है, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वो समझ सकता है कि मुझे अभी निष्कर्म अर्थात कर्म की आवश्यकता नहीं, पहले फल की इच्छा नहीं थी, अब वो सोचता है कि मैं तो आत्मा हूं मैं शरीर नहीं हूं और मुझे वो संन्यास ले सकता है अर्थात वो सब अपने निजी कर्तव्य अपने निजी धर्म का त्याग कर सकता है। जब हमने योगा लेडर की चर्चा की थी आगे के 6 अध्याय में तब हमने ये ज्ञानी के विषय में बताया था कि वो किस तरह से कर्म से मुक्ति चाहता है, कर्म फल से मुक्ति निष्काम कर्म योग में आता है, लेकिन जब आगे बढ़ता है तो वो कर्म से मुक्ति प्राप्त करता है ज्ञानी और तब जाके वो आत्मा में स्थिर हो जाता है और फिर उसको राग द्वेष ये सबसे मुक्त हो जाता है। इसकी चर्चा हमने पहले की थी। तो भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रॉपर तात्पर्य में कहते हैं कि जो भक्त होता है वो इससे आगे बढ़ जाता है। समझ लो कि ये एक अवस्था है ज्ञान योग की, लेकिन भक्त ज्ञान योग की सीमा को भी पार कर देता है और वो ज्ञानी ब्रह्म ज्योति तक सीमित हो जाता है, ब्रह्म ज्योति की सिद्धि तक, लेकिन भक्त जो होता है वो परमेश्वर की सेवा में अनुरक्त होता है। अर्थात समझ लो कि माइनस से 10 से प्लस 10 का एग्जांपल आपको दूसरी तरह से बता सकते हैं। समझ लो कि कोई व्यक्ति बीमार है और वो अस्पताल में एडमिट है तो वो अभी समझ लो कि वो माइनस 10 में है, फिर उसने ज्ञान योग की विधि का अनुसरण किया अर्थात दवाई लेना शुरू किया, कर्म योग और ज्ञान योग सबसे लिया, तो धीरे 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 उसका रोग नष्ट होने लगा। अगर एक दिन ऐसा आया कि कि डॉक्टर ने बोल दिया कि तब अब तुम डिस्चार्ज हो सकते हो और तुम्हारा रोग नष्ट हो गया, तो ये उसका जीरो तक पहुंच गया, माइनस टेन से जीरो तक पहुंच गया। लेकिन विज्ञानी जो होते हैं वो बस ये रोग से मुक्ति जो है उसको श्रेष्ठ मानते हैं कि हाँ चलो मेरा रोग खत्म हो गया। लेकिन भक्त क्या करता है कि भाई डिस्चार्ज होकर के पड़ा नहीं रहेगा, डिस्चार्ज होकर के आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, हॉस्पिटल से कोई डिस्चार्ज होगा तो घर में आएगा, घर में उसका जो रूटीन काम था कि वो बिजनेस करता है, रसोई करता है, कुकिंग करता है, व्हाटएवर उसका जो रूटीन है वो शुरू करेगा वापस, जैसे एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करेगा। तो नॉर्मल लाइफ जीना जो है वो प्लस टेन में आता है, अर्थात तो भक्त के लिए वो उसका वर्णन भक्त के साथ किया जाता है। और ज्ञानी का वर्णन होता है कि वो केवल अपना बुखार उतार सकता है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, वो कोरोना वायरस से मुक्त हो जाएगा, लेकिन भक्तों का वो नॉर्मल लाइफस्टाइल को फॉलो करेगा। इज दैट मेक सेंस?
वेरी नाइस एग्जांपल प्रभु जी।
ओके सो नाउ वी कैन गो फॉर नेक्स्ट श्लोका, टेक्स्ट नंबर 50।
हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुई व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो।
तात्पर्य,
भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्ति पर कार्य में लग कर परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो। यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह आत्म साक्षात्कार की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है।
यहाँ पर हमने क्या समझा कि ज्ञान की वास्तविक सिद्धि, वास्तविक अगर कोई ज्ञानी है वो शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में उसकी सिद्धि मानी जाएगी। जैसे अगर वही एग्जाम्पल यूज करे तो बीमारी से ठीक होना ये ज्ञानी का लक्ष्य है, लेकिन भक्त का लक्ष्य है कि वो कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करे। तो अगर वो ज्ञान की वास्तविक सिद्धि प्राप्त करता है तब ये पॉसिबल हो सकता है। तो ज्ञान की चरम सीमा अर्थात ज्ञान योग की जो चरम सीमा कैसी होती है उसके विषय में तीन श्लोकों का उच्चारण हुआ है, वो पढ़िए।
अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक को वश में करते हुए इंद्र तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं का के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है।
तो यहाँ पर इन सब गुणों का वर्णन हुआ है कि ज्ञान के जो उच्चतर अवस्था तक कोई अगर पहुंच जाता है, ज्ञान की उच्चतर अवस्था, तो वो कौन सी अवस्था मानी जाती है? You can read this first paragraph.
जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है वह अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है। इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। वह इंद्र तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता, न ही वह अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। क्योंकि वह देहात्म बुद्धि से रहित होता है अतः वह मिथ्या गर्व नहीं करता, भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है और इंद्र तृप्ति न होने पर कभी क्रुद्ध नहीं होता, नहीं वह इंद्र विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है और यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था है। वह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। जब मनुष्य देह आत्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वह शांत हो जाता है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन भगवद गीता में 2.70 इस प्रकार हुआ है।
बहुत बढ़िया।
जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने और सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है।
यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो मिथ्या अहंकार से रहित होता है और अपने आप को शरीर नहीं समझता, इसलिए वो देहात्म बुद्धि से पर हो जाता है। तो इसलिए इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो ब्रह्मभूत अवस्था तक स्थिर हो जाता है। ब्रह्मभूत अवस्था का अर्थ होता है कि वो मनुष्य सब प्रकार की बाह्य चेतनाओं बाह्य चीजों से डिस्टर्ब नहीं होता है और परेशान नहीं होता है, और साथ साथ उसका जो आकर्षण होता है भौतिक चीजों के प्रति, इंद्रिय भोग के प्रति, वो सारे आकर्षण समाप्त हो जाते हैं। वो मुक्ति की अवस्था तक पहुंच जाता है या चरम सीमा तक पहुंच जाता है, जीवन मुक्त की अवस्था। जीवन मुक्त की अवस्था में उसको अगर आप ये कहोगे ना उसको किसी चीज में रुचि नहीं है, भौतिक आकर्षण में कोई रुचि नहीं है। आप उसको बोलो रायपुर के पकौड़े खाएंगे या पिज्जा खाएगा तो उसको कोई इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट। अपनी इंद्रियों की संतुष्टि करने के पीछे उसका कोई लगाव नहीं है और इसी तरह से वो जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है। अर्थात तीन गुणों की जो प्रतिक्रिया है उससे अपने आप को मुक्त कर लेता है, पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की अवस्था तक पहुंच जाता है। प्रभुपाद यहाँ पर श्लोक बता रहे भगवद गीता का, जो समुद्र की तरफ शांत रहता है, इंद्रियों की इच्छा आती है लेकिन वो इच्छा उसको कुछ विचलित नहीं कर पाती, अर्थात तो उससे उत्तेजित नहीं हो जाता, उससे प्रभावित नहीं होता, इस तरह से वो अपनी स्थिति को बनाए रखता है। सो नाउ वी कैन हैव अ स्मॉल टॉक बिफोर वी गो टू टेक्स्ट नंबर 54, सम स्मॉल एक्सरसाइज। So, अभी हम यहाँ पर दो प्रकार के डिवोटिस डिवाइड कर रहे हैं हमारे बीच में, जिसमें बिकॉज इट्स एक्सरसाइज में डिवोटिस की संख्या ज्यादा है इसलिए हम सबको पार्टिसिपेट नहीं कराते, बट वी मेक अ स्मॉल okay how okay so we can do one thing text number 48 and text number 49 ye dono shlok ka upyog karke इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रही है, तो 48 और 49 में एक विसंगति प्राप्त हो रही है। तो अभी हम दो पॉइंट्स बताते हैं आपको जिसमें से ओके तो अभी ऐसा करते हैं कि वी हैव नाउ 22 पार्टिसिपेंट्स कनेक्टेड एंड 10 पार्टिसिपेंट ऊपर से जो मेरे यहाँ पर देख रहा है अल्फाबेटिकली उसमें से ऊपर के 10 हम ले लेते हैं और नीचे के 10 अलग करते हैं। ऊपर के 10 आदि सेवक प्रभु अमर सीता माता जी अभय गौरांग प्रभु अरविंद प्रभु बलराम वल्लभ प्रभु दैव राम प्रभु 6 हुआ गोकिला माता जी 7 हरिवंश प्रभु 8 हेतवी 9 केशव चंद्र प्रभु 10 एंड कुसुम लीला माता जी क्या हुआ 10 हमें 10 तक जाना है। लेट्स सी 9, 10 केशव चंद्र प्रभु तक जो डिवोटीज है जिनका जिनका अभी हमने नाम दिया ये सारे डिवोटीज इस विषय में बोलेंगे अपना अपना प्रस्तुत करेंगे मत कि ऐसा मानते एवरी डिवोटी शुड बी सेटिस्फाइड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज और हर पोजिशन अकॉर्डिंग टू मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर अर्थात हर एक भक्त को अपने स्वाभाविक गुणों से प्रभावित होकर के अकॉर्डिंगली उसके अनुसार ही काम करना चाहिए अपने भौतिक जो प्रकृति के गुणों के द्वारा उसी प्रकार से शुड बी सेटिस्फाइड टू एक्ट उस कार्य करने से संतोष प्राप्त करना चाहिए और उसके नीचे के जो भक्त है उनका नाम हम बोल रहे हैं कुसुम लीला माता जी मालती माता जी मोटो माता जी मोटो सिद्धस जो भी है मोटो प्रभु जी जो भी है पद्मिनी चंद्रिका माता जी पारुल माता जी फिर प्रिय गोपिका माता जी पद्म सेवा माता जी राधाइला माता जी रमाकांत प्रभु एंड आकृति माता जी एंड नंदन आचार्य प्रभु एंड सुभद्रा माता जी एंड सुदर्शन प्रभु। नाउ आप ये सोच रहे हैं कि हर एक भक्त को परफेक्ट सन्यासी बनने के लिए प्रयास करना चाहिए जो केवल आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के लिए ही तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है। तो अभी ये इसमें कॉन्ट्रडिक्शन प्राप्त हो रही है। पहला जो था उसमें कुछ अलग विचार है दूसरा कुछ है उसमें कुछ अलग विचार है तो आप उसमें अपना मत प्रस्तुत कर सकते हो।
प्रभु जी कैन यू रिपीट द सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन इज एवरी डिवोटी शुड स्ट्राइव टू बिकम अ परफेक्ट सन्यासी ओनली रिलिशिंग ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस जो तीन गुणों से पर सुख है उसको उसका आस्वाद करने वाला जो परफेक्ट सन्यासी है वही बनने के लिए मनुष्य को प्रयास करना चाहिए बस।
प्रभु जी ये कॉन्ट्रडिक्शन हमें किन दोनों के बीच में बताना है जो फर्स्ट टॉपिक और सेकंड सेकंड ग्रुप को दिया उन दोनों के बीच में बताना है।
यस क्योंकि 48 जो था वो पहले 10 भक्तों को होता है और 49 श्लोक है वो दूसरे 10 भक्तों के लिए।
तो जो हमें आपने मतलब पहले 10 भक्तों को जो दिया है वो अपने टॉपिक को किसके साथ कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे
दूसरे टॉपिक के साथ
यानी हमें ऐसा बोलना
कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं है या कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है दिस इज द पॉइंट।
अच्छा वो हमें हाँ ओके हाउ मच टाइम इज देयर प्रभु
लाइक लेट्स से 3 मिनट्स टू थिंक एंड लाइक 5 मिनट्स टू डिस्कस।
ठीक है
उसके पास जो भी नॉलेज है या उसके पास जो भी स्किल है तो उसके साथ वो एज ए ट्रेनिंग वो कर्म कर सकता है और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली जब उसका उसमें जैसे जैसे ट्रेनिंग होगी और उसमें सब नॉलेज आएगा और जब वो आत्म समय में तथा अनासक्त बनेगा तो प्रैक्टिस करेगा तो धीरे धीरे वो संन्यास तक पहुंच सकता है। तो जैसे हम देखते हैं हमारा जो अंतिम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, तो इनिशियली हमें अमुक नियम फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे हम 16 माला कर रहे हैं, और अगर हम ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो धीरे 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 बाद में फिर हमें ऐसी स्टेज आ जाएगी कि जहां हमें 24 घंटे भगवान का स्मरण रहेगा, तब उस अवस्था में मेरे ख्याल से नियम ऑटोमेटिक फॉलो हो जाते हैं। तो अगर ये इसमें दोनों श्लोकों का यही है कि इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, और हम शुरू से यदि हम ट्रेनिंग ऐसे ट्रेनिंग काम करेंगे और आगे फिर हम ऑटोमेटिक अगर ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो संन्यास की तरफ जरूर बढ़ पाएंगे।
ओके, सो टेक्स्ट नंबर 49 वाले जो डिवोटीज है उसकी ओर से हम लोगों के कोई कहना चाहता है आपके स्टैंड को पकड़ करके?
हरे कृष्णा। तो कॉन्ट्रडिक्शन इस प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे हम बद्ध अवस्था में अभी हैं, तो हम वास्तविकता में इसकी इम्पोर्टेंस को, भक्ति की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं। तो हम लोग अपने ही कार्यों में उलझे रहते हैं कि मुझे घर का काम करना है, मुझे ऑफिस का काम करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। माला 16 हो गई तो 16 माला हो गई, तो इस प्रकार से माला को रखा जाता है कि अब मिले ना अगले दिन तक, तो फिर हम बिल्कुल भूल ही जाते हैं। तो 49 श्लोक में ये कह रहे हैं कि जब पता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है तो उसी के लिए स्ट्राइव क्यों ना किया जाए। तो इससे मैं मतलब कनेक्ट कर पा रही हूँ एक हिज ग्रेस सच्चिदानंद प्रभु का जो एक रिट्रीट हुआ था उसमें उन्होंने बताया था कि प्रेमा भक्ति की अवस्था को अगर हम टारगेट करेंगे तो शायद हमें उसके नीचे वाले स्तर तक तो पहुंच ही जाएंगे। स्तर वास्तव में वो है, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि 4 नियम फॉलो करो, 16 माला करो, आप भगवत धाम जाओगे। तो भगवत धाम चले जाओगे लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो अगर हम ये केवल अपना नियम 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 करते रहेंगे, कट टू कट इतना काम हो गया जयराम जी की, तो फिर हमारा जो मतलब कृष्ण प्रेम तक हम नहीं पहुंच पाएंगे अगर केवल नियम नियम करते रहेंगे। जबकि अगर हम अगर अलग से स्ट्राइव करेंगे कि नहीं, जब मुझे पता है कि मेरा लक्ष्य ये है तो इसी में क्यों ना मैं ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करूं, क्यों मैं अपने आप को इन फालतू की चीजों में एंगेज रखूं, तो अगर उसके लिए स्ट्राइव करेंगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर तक पहुंच पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भक्त होता है उसका लक्ष्य मात्र भगवत धाम जाना नहीं है, उसका लक्ष्य भगवान से प्रेम करना है। तो अगर प्रेम की अवस्था तक पहुंचना है तो मात्र फिर नियम ये कट्टू कट वाला हिसाब किताब फिर उसमें तो नहीं चल सकता है, अगर वास्तव में कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो।
सो अपेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन अगर आप इसके आधार पे प्रस्तुत कर रहे तो अपेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगी?
मतलब मुझे प्रभु जी क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं आया।
अगर जो लोग इस दो श्लोक पे कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करना चाहते हो तो वो किसके आधार पे कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर सकते हैं?
अपनी साधना की प्रैक्टिसेस के बेसिस पर, कि अगर कोई भक्त एक जो 48 वाला है वो ये सोचेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा कर्तव्य है कि मुझे सुबह उठ करके जल्दी जप करना है, अपनी तपस्या करनी है, यज्ञ करना है, हवन करना है, फलाना फलाना मेरा नियम है, ये मुझे करना है, मैं अपना पूरा नियम रात के 10 बजे तक कर दिया और मैं टाइम से सो गया, मैं जिंदाबाद, मैं बहुत अच्छा सा मैंने कर दिया। और जो 49 वाला है वो कहेगा कि नहीं, मेरे को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करनी है तो ये नियम ये तो चलेगा ही, उसके साथ जो इसके लिए बेस है मुझे उसके लिए स्ट्राइव करना है। एग्जाम्पल्स हम हालांकि उनको हम अनुकरण नहीं कर सकते हैं श्री हरिदास ठाकुर जी का या इस प्रकार से, लेकिन प्रयास तो करो अपनी तरफ से। तुम इतनी माला नहीं, 3 लाख नाम नहीं ले सकते, लेकिन चल अपनी तरफ से कुछ तो एक्स्ट्रा कर। 16 पे माला क्यों रख रहे हो फिर?
सही बात है, गुड। और अभी नाउ 48 वाले डिवोटीज की साइड से।
हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे ये बोलना था कि 48 श्लोक में तो जैसे कि कोई भी कार्य हम करते हैं चिंता मुक्त होके करते हैं, क्योंकि इसमें तो यही कहा है कि अपने स्वधर्म में रह के करने से भगवान तो माफ करने वाले, मतलब वी आर नॉट लाइक लायबल फॉर एनी सिंपल रिएक्शन। सो वो चिंता मुक्त रह के ही कार्य करता है, कोई भी वर्ण जो आता है वो चिंता मुक्त रह के ही कार्य करता है। जबकि और वो मेन कॉन्ट्राडिक्शन है कि बस वो आगे और कुछ नहीं देखता है कि बस वो कार्य तो कर रहा है कि माना कंटेमिनेशन वाला है, अगर थोड़ा ज्यादा भी खराब करता है तो भी वो उतना परफेक्शन की ओर गोल करके देखता नहीं, बस अपनी खुशी की ओर फोकस करके करता है। जबकि 49 में तो ये है कि यू हैव टू बी मोर डिसिप्लिन बिकॉज योर योर गोल इज कृष्ण इज योर सेंटर।
So, the opposite party में से कुछ बोलना चाहता है कुछ?
हरे कृष्णा।
Yes।
प्रभु जी, मेरे हिसाब मतलब मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 48-49 में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, इट इज जस्ट ऑन स्टेज।
चलो नहीं है, लेकिन अगर हमें क्रिएट करनी हो तो कैसे करें?
क्रिएट करना हो तो एक स्टेज वाइज कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट 48 में जो भगवान बता रहे उसमें हम जो हमें जो करना है वो कार्य करें, पर अल्टीमेटली वो कार्य दोषपूर्ण तभी नहीं होगा जब वो विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाए।
ओके।
और 49 में डायरेक्टली मतलब वो डायरेक्ट कृष्ण से कनेक्ट, मतलब सारे फल और कर्म सब कुछ भगवान को, तो एक हायर स्टेज है 49 शायद मेरे हिसाब से, और 48 है जो एक स्टेप नीचे का है। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव यही है कि हम जो भी कार्य करें वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो। सो
तो ये पॉसिबल है कि 48 और 49 को लेकर के दो लोग आपस में झगड़े, ये पॉसिबल है?
नहीं, झगड़ना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि भले अगर हमारा जो भी कार्य है, मतलब बाय नेचर या जो भी गुण के हिसाब से
हमारे इसको शरीर तो बहुत बड़ा है प्रभु जी, झगड़ने वाले कोई कमी नहीं है इसको के अंदर भी। तो इसलिए दो प्रकार के भक्त तो हो सकते हैं ना, अलग अलग विचार वाले,
राइट?
तो वही चीज को मैं चेक करना चाहता था कि अगर समझ लो कि आप गाइड कर रहे हो और आपके सबॉर्डिनेट आपके ऐसे कोई दो डिवोटी आपके काउंसलिंग ले रहे हैं आपसे, ये दोनों के एक 48 पर अड़ा हुआ है और एक 49 पर अड़ा हुआ है, और ये दोनों आपके पास आते हैं समाधान पूछने के लिए, then you can better, I mean, आपका बात सही है, you express your point कि इसमें contradiction नहीं है, उसको समझाने का तरीका आना चाहिए, then you can understand that it is not contradiction, right? Yeah, but you can be open with this possible chances that people within ISKCON may come up with this different mentalities. Yes.
हरे कृष्ण।
हाँ बोलो।
प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, ये जो हमने ये चैप्टर का ब्रेकडाउन किया था, तो इसमें हमने ब्रेकडाउन ऐसे 48 वर्ष तक का ब्रेकडाउन था कि आपको फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन फ्रॉम परफॉर्मिंग ऑक्यूपेशनल वर्क, यानी स्वधर्म से स्वधर्म, या फिर इसको हम निष्काम कर्म तक की स्टेज पे ये ब्रेकडाउन था इसका 48 का, और 49 से कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, यानी कि ज्ञान 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 के माध्यम से, प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञान के माध्यम से हम भक्ति योग तक पहुंचने का वो वहां से शुरू होता था होता है। तो प्रभु जी, ये एक्चुअली अगर हम योगा लैडर से समझते हैं तो ये निष्काम 48 जो है वो हम निष्काम कर्म योग को बता रहे हैं, और जो 49 है वो ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान के मार्ग पे हैं, और पर इन दोनों में पहले से ही प्रभुपाद जी पहले से ही बताएं और इसमें भी बताएं परपोट में कि जो रिनन्सिएशन है वो कब, मतलब टू चेंज अवर ड्रेस नहीं है, मतलब वो सैफ्रन कपड़े पहन लेना इज नॉट रिनन्सिएशन, यानी संन्यास, और जो संन्यास है वो वास्तव में आपके आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसके फ्रूट्स का, या तो उसके जो फ्रूट्स हैं उसका त्याग करना, या फिर मतलब उससे अटैच ना होना संन्यास रिनन्सिएशन कहलाता है। और जब हम भक्ति की इस निष्काम कर्म से जब धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करते करते जब भक्ति के मार्ग पे आ जाते हैं या वैष्णव की संग मिलता है और निष्काम कर्म से सीधा भक्ति जा सकते हैं, तो हम कर्म को भी त्याग, मतलब कर्म से भी और फ्रूट से भी दोनों से अटैच नहीं होते, तो वो परफेक्ट संन्यास स्टेज को पहुंच जाते हैं, मतलब परफेक्ट संन्यास यानी रिनन्सिएशन ओनली, मतलब प्लीजिंग ओनली कृष्णा, वो प्रेमा भक्ति लेवल शायद जो माता जी बोल रही थी। और जब ज्ञान से जाते हैं तो पहले ये जो इसमें ये जो क्वालिटीज दी हैं सेल्फ कंट्रोल, ये सब तो एक ज्ञान योगी पहले अपने अंदर ये सब लेकर आता है और फिर वो जब ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति वाले स्टेज में ब्रह्मेति तक पहुंचता है, फिर उसके बाद वो अपना सांख्य के माध्यम से 25th एलिमेंट पहचानता है, फिर 26th एलिमेंट की सुपर सोल है और हो सकता है कि आगे जब वो परमात्मेति तक पहुंचने के बाद वो ये समझता है कि इसके आगे भी है, या तो वैसे खुद से समझता है या फिर अगेन उसको भक्ति की कृपा मिलती है क्योंकि भगवान उसकी, अगर उसका डिजायर सिंसियर है तो भगवान उसकी डिजायर को देखते हैं और उसको भक्त के द्वारा उसकी हेल्प करेंगे और उसको भगवानिति यानी कि संन्यास का जो अल्टीमेट है प्रेम भक्ति वो लेवल तक वो भगवानिति पे पहुंच जाएगा। तो दोनों मतलब ये योगा लैडर के दो स्टेप्स हैं और दोनों कल्मिनेट भक्ति पर ही करेंगे, भक्ति योग पे करेंगे शुद्ध भक्ति के माध्यम से, या फिर उनकी जैसे ज्ञान योगी का अगर डिजायर अनमोटिवेटेड है और कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है या फेम ये सब चाहने की वेल्थ के उसकी वो नहीं है और पॉपुलैरिटी की नहीं है और बिल्कुल ध्रुव महाराज जैसा वो इतना शुद्ध तरीके से ज्ञान योग कर रहा है तो वो okay. वो भी पहुंच जाएगा।
ओके जो एनी अदर डिवोटी जस्ट एनी अदर लास्ट एनीबॉडी वांट्स टू से समथिंग ऑन दिस कि कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है कि नहीं।
प्रभुजी एक एक उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं, जैसे हमको एक नया भक्त जुड़ता है और उसको ऑन द वेरी फर्स्ट डे हम उसको बोलेंगे कि आपको 16 माला करनी है, 4 नियम का पालन करना है, पहले दिन से उसको तपस्या दिखा देंगे तो वो प्रैक्टिकल फिजिबल नहीं है। और हम भी देख रहे हैं जैसे हम जब शुरू में कोई जुड़ता है तो उसको बोलते हैं 1 माला करिए, 2 माला करिए, धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलपमेंट होता है। तो अगर ये प्रोसेस को हम कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो हम ये धीरे धीरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो एक स्टेज आएगा जहां हमें ये जो संन्यास की जो सोच है वो ऑटोमेटिक डेवलप होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो सेकेंड इसमें ना डिफरेंट झगड़ा होने का है क्योंकि हम जो 47 वाला श्लोक है उसको बोलेंगे कि आप स्लोली करिए और बाद में वो एक ऐसी अवस्था आप जरूर पहुंचेंगे।
गुड, तो अभी हम एक दो भक्तों से जस्ट स्मॉल छोटे छोटे ओपिनियन मांगना चाहते हैं कि जिन्होंने आज सुबह से कुछ बोले ही नहीं है। तो हरिवंश प्रभु आप कुछ कहना चाहते हैं इसके विषय में? Mimamsa is there?
Okay. Yes, Prabhuji, I am.
Yeah, but aapke pitaji hai?
No, I am in a different device. So I am not with them.
Oh, you are a different device. You are with Motoji or what?
Ek second.
जी प्रभु जी, हरे कृष्ण।
यस, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही थी क्या?
नहीं 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 पहुंच रही थी, लेकिन वो मतलब यूज करने का मतलब वो बटन कुछ वो हो गया था,
फिर मैंने बीमार सा को याद किया।
हाँ जी, हाँ जी, बस प्रभु जी 48 का जो श्लोक है उसमें भगवान ने क्लियर कट बताया है और हमें भी इतना समझना चाहिए कि हम जो भी कार्य करें वो भगवान को ध्यान में रखते हुए भगवान की संतोषता के लिए हम करें तो उसमें हमें कुछ ज्यादा करना भी नहीं है और ज्यादा शायद कष्ट ना भी पड़े। तो मतलब हमें इतना तो स्वार्थी होना चाहिए कि भगवान जो बता रहे हैं वो उसमें एकदम क्लियर कट है कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको ध्यान में रखते ही हमें कुछ भी कार्य करना है वो करना चाहिए।
बलराम वल्लभ प्रभु,
हाँ यस प्रभु जी, इसको थोड़ा मतलब इजी करके ऐसे समझा सकते हैं कि 48 में जो है वो गुणधर्म की बात की गई है कि भी अग्नि का गुणधर्म है वो मतलब गर्म होती है और उसके अंदर से धुआं भी निकलता है, लेकिन अगर हमको कुछ पकाना है या गर्मी चाहिए तो हमको उसको रखना पड़ता है। तो ऐसे अगर 48 में हम देखें तो आपने बोला कि जैसे इस्कॉन में हर एक टाइप के डिवोटीज हैं, तो उनके गुणधर्म जैसे खांड मीठी होती है, नींबू खट्टा होता है, नमक खारा होता है, तो ये अपना अपना गुणधर्म है कि भाई ये ऐसा है। लेकिन अगर इसको 49 के साथ हम मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करना या कोरिलेट करना है, तो 48 में तो मतलब सब ऐसे अलग अलग गुणधर्म वाले लोग हैं कि जिनको मतलब हमने प्रभुपाद की शिक्षा दी कि भाई आपको 16 माला करनी है, तो वो जैसा भी है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, तो वो चार नियम का पालन, 16 माला ये सब करेगा। लेकिन जब हम 49 पे आते हैं तो आत्म संयम और अनासक्त और ये जो गुण है तो वो अपने आप उसके अंदर डेवलप होंगे, और वो भले थोड़ा तीखा है या खट्टा है, लेकिन ये प्रैक्टिस करने से वो संन्यास की तरफ आगे बढ़ेगा।
ओके, गुड। अच्छा एग्जांपल लिया खट्टे मीठे का। सो नाउ हेतवी, आप बोलिए आप क्या समझे इसको। आवाज नहीं आ रही आपकी।
एक्सप्लेन करना था,
एक्सप्लेन करना था,
एक्सप्लेन करना था,
एक्सप्लेन करना था।
अगर हम एक बिजनेसमैन की बात करते हैं कि एक अनियन बिजनेसमैन है, तो अगर वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जॉइंट होते हैं तब वो 48 वाला श्लोक, एक गृहस्थ परिवार से है तो वो अपना बिजनेस तो कर ही रहा है पर कृष्णा कॉन्शियस में भी जुड़ रहा है, पर जब उसको 49 से रिलेट करते हैं तब अगर वो अनियन खाना छोड़ देता है तो दैट्स गोइंग थ्रू सन्यासी, तो वो सन्यास के स्टेप में आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं कि 48 और 49 को।
ओके, सुदर्शन अमृत, तो आज सुबह से आपका आवाज नहीं सुना।
कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, तो मैं इसे यही समझाऊं कि आदमी जो भी कर्म कर रहे हैं, अपने जो भक्त हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं उसको वो ड्यूटी में लगा रहना है, और धीरे धीरे संन्यास आत्म संयम और भौतिक इच्छाओं से विरक्त होके आगे कृष्ण कॉन्शियसनेस में बढ़ना चाहिए।
अच्छा, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों की नहीं है?
कॉन्ट्राडिक्शन अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, क्योंकि एक श्लोक में 48 में तो भगवान सब त्यागने को मना कर रहे हैं और 49 में संन्यास के माध्यम से सबको त्यागने के लिए बोल रहे हैं।
ओके,
तो इसी तरह कॉन्ट्रडिक्शन बन सकता है ये।
ओके, नंदन आचार्य प्रभु।
हरे कृष्णा, बोलिए
बोलिए।
सो जैसे सुदर्शन अमृत प्रभु ने बताया कि यहाँ पर 48 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि हम कुछ भी कार्य करेंगे तो कर्म में तो हमेशा दोष रह जाएंगे, तो इससे हम बच नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दे। यहाँ पर भगवान बताते हैं कि इन सब दोषों के होते हुए भी हमको हमारा जो कर्तव्य को करते रहना चाहिए। यहाँ पर भगवान सब कार्य करने की बात ही कर रहे हैं, छोड़ने की बात नहीं कर रहे। लेकिन 49 में अगर 14 में बात कर दो, इसमें कुछ कोई अगर कोई व्यक्ति को विसंगता करना चाहे कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकता है कि वो सब कर्म है दोष है तो सब कर्म करना है कि कर्म कर्म को छोड़ दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन इधर यहाँ पर भगवान बता रहे कि समझो कि कोई व्यक्ति भी प्याज बेच रहा है, भक्ति में आ गया तो अपना प्याज बेचना उसको बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन प्याज बेच सकता है लेकिन प्याज खाना नहीं, दोस्त तो रहेगा करो में कुछ में काम कर दोस्त तो रहेगा हमारा तो। लेकिन 49 के आधार पर देखते हैं प्रभुपाद बता रहे कि अगर एक भक्त जो होता है वो भक्त भगवान की भक्ति में जुड़ने से अपने आप उसमें ये संन्यास गुण प्रकट होंगे धीरे धीरे साधु गुरु वैष्णव की सहायता से, और अपने आप स्वतः आत्म संयम और अनासक्ति व्यापार आ सकता है।
ठीक है, सो वी टुक रैंडमली अलग अलग भक्तों से हमने रैंडमली पूछा, सो नाउ वी कैन गो फर्दर टू टेक्स्ट नंबर 54।
प्रभु जी आप एक बार और इसको क्लियर कर दीजिए ना।
हाँ, आई मीन भक्तों ने जो बताया दैट इज वेरी मच करेक्ट कि ये दोनों ही अलग अलग विचार दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा विचार है नहीं कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म जो होता है वो उसको कंटिन्यू करना चाहिए मनुष्य को, और फिर धीरे 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 गुरु के द्वारा बताए सिखाए गए आदेश का पालन करने के माध्यम से वो आत्मसंयम और अनासक्त वाला जो जीवन है वहां तक पहुंच जाएगा, क्योंकि पहले स्टेज में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन धीरे 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 इस स्टेज तक पहुंचा जा सकता है। उसका उद्देश्य जैसे हमने पहले विस्तार से चर्चा की थी कि कृष्ण नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति केवल अपने कर्मों में फंसा रहे, कृष्ण चाहते हैं कि मनुष्य मेरी खुशी के लिए कर्म करे। आई एम द गोल ऑफ लाइफ, आई शुड बी द गोल ऑफ लाइफ। वर्णाश्रम को फॉलो करना इट्स नॉट द गोल ऑफ लाइफ, द गोल ऑफ लाइफ इट इज ओनली अ साधन, साध्य नहीं है। साधन और साध्य दोनों का जानना आवश्यकता होता है। तो निजी कर्तव्य कर्म जो है वो केवल साधन है, उसको साध्य मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। अगर कोई इसके परफेक्शन को अगर करता है, उसका परफेक्शन साधन में परफेक्शन लाता है और साधन को ही साध्य मानने की भूल करता है तो समस्या खड़ी होती है। लेकिन साधन के माध्यम से साध्य को प्राप्त करता है तो वो एक्सेप्टेड है, और उससे आगे बढ़कर के प्रॉपर्टी इसके आगे बढ़कर के जो प्लस 10 वाले जो है भक्त है उनके लिए साधन और साध्य दोनों ही भक्तियों को हो जाते हैं। अर्थात हमारा वर्णाश्रम जो भक्ति से जुड़ा हुआ होता है, नवदा भक्ति होता है, वो वास्तव में साध्य ही साधन बन जाता है। इसलिए साधन नवदा भक्ति है या भक्ति है, और साध्य है भगवत प्रेम, प्रेम प्रयोजन। तो इस आधार से हमें अपने आप को लगाना चाहिए, और ये विम्सिकली नहीं हो सकता है, ये हो सकता है गुरु के मार्गदर्शन से ही हो सकता है। कोई व्यक्ति अपने निजी कर्तव्य को खुद से चुनेगा और खुद ही साधन साध्य के विषय में निर्णय करेगा और खुद ही ये डिसाइड करेगा कि उसका कर्तव्य क्या है, तो वो फंस सकता है। जनरली कुछ ओवर कॉन्फिडेंट डिवोटी हो सकते हैं कि वो किसी की परवाह नहीं करते, वो केवल अपनी सोचते हैं, तो इस तरह से वो आगे नहीं बढ़ सकते। वो उनको लगेगा कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन वन शुड अंडरस्टैंड व्हाट द मूड ऑफ श्रील प्रभुपाद, व्हाट इज द मूड ऑफ योर स्पिरिचुअल मास्टर, व्हाट इज द मूड ऑफ चैतन्य महाप्रभु, देन यू कैन। ये तभी संभव है कि जब आप प्रभुपाद के सारे ग्रंथों को पढ़ोगे, अदरवाइज यू विल फेल। इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना इतना आवश्यक है, अदरवाइज दृष्टिकोण नहीं मिलेगा आपको, विजन नहीं मिलेगा कि कर आगे लक्ष्य क्या होना चाहिए, साध्य क्या होना चाहिए, डिस्टर्ब हो जाएंगे अपने आप। सो वी शुड बी क्लियर। इसलिए हम अभी चर्चा कर रहे थे कि क्या है उसका उद्देश्य। अभी समझ लो किसी व्यक्ति ने टेक्स्ट नंबर 48 का पूरा फायदा पूरा किया, समझ लो किसी व्यक्ति ने टेक्स्ट नंबर 48 का पूरा पालन किया और टेक्स्ट नंबर 49 तक पहुंच गए, और टेक्स्ट नंबर 49 में भी वो नंबर 1 बन गया, उसका सब कुछ प्राप्त होगा, तो क्या होगा आगे जाकर के। सो ऐसी अवस्था में टेक्स्ट नंबर 54 विल कम टू द आंसर एज आंसर। पढ़िए।
इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है।
So, ये श्लोक बड़ा आई थिंक ये आपका के एम भी तो होगा ही 100%। ब्रह्म भूत प्रसन्न
आत्मा। यस प्रभु जी
ये भी है और 55 भी है। 55 भी, यस। सो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, जब उस अवस्था तक वो व्यक्ति पहुंच जाता है कि जब टेक्स्ट नंबर 49 का पूरा हो गया, टेक्स्ट नंबर 51, 2, 3 ये सब गुण उसमें आ जाते हैं, तो वो ब्रह्मभूत अवस्था तक आ सकता है, अर्थात वो जीरो तक पहुंच जाता है या मुक्तात्मा बन सकता है। उसको किसी चीज का न सोचती न कांक्षती, न सोचती अर्थात किसी चीज का शोक नहीं करता, ऐसी कोई चीज उसके पास से चली जाए तो उसका शोक नहीं करता और किसी चीज की इच्छा नहीं करता, न कांक्षती, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको कोई बाह्य सोच से हैप्पी नहीं होता है। समस्त सर्वेश भूते सबके प्रति समान भाव से बिहेव करता है। ऐसा व्यक्ति मद भक्तिम लभते पराम, वो मेरी परम भक्ति को प्राप्त कर सकता है। समझे, यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है। कौन व्यक्ति? जो ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंच गया है, अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था पहुंचने वाला ही भक्ति मार्ग में जुड़ेगा, ये इसका तात्पर्य नहीं है। लेकिन ज्ञान योग में जुड़े हुए जो भक्त है वो जब तक ब्रह्मभूत अवस्था तक नहीं पहुंच सकते योगा लैडर के सिस्टम में, तब तक वो लोग भक्ति तक नहीं पहुंच पाते। और दूसरे शब्दों में जो लोग इस्कॉन समझ लो कि हमारे भक्तों के अंतर्गत ये देखे, तो हम तो ऐसा मानते हैं कि हम लोग तो डायरेक्ट भक्ति के मार्ग में जुड़ने वाले लोग हैं, इसलिए हम तो योगा लैडर को हमारे लिए नहीं है ये सब, ठीक है ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन अधिकतर केस में ऐसा देखा जाता है कि निष्काम कर्म योग भक्तों में देखा जाता है, तो ये योगा लैडर का एक अंश है। तो इसलिए अभी अगर हमारी भक्ति कर्म मिश्र भक्ति हो सकती है, ज्ञान मिश्र भक्ति हो सकती है, लेकिन उसको शुद्ध भक्ति तक पहुंचना है तो उसको इस स्तर तक पहुंचना पड़ता है। शुद्ध भक्ति वहां तक आती है। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति मानता है कि मुझे शुद्ध भक्त बनना है, तो ये है सिस्टम, क्या न सोचती न कांक्षती, वो आत्मा के स्तर पे काम करता है, ना शोक करता है ना ही कामना करता है। तो अगर कोई समझ लो कि ब्रह्म की उपासना करने वाला ज्ञान योगी है, तो उसकी आध्यात्मिक जो प्यास थी वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है। कहाँ पर? ब्रह्मभूत अवस्था पर। ही इज परफेक्ट। ब्रह्मभूत का अर्थ होता है वो ब्रह्म की प्राप्ति करने वाला। लेकिन जो कृष्ण भक्ति के लिए ये ज्ञान योग का पालन कर रहा था या योग कर रहा था, वो व्यक्ति आगे जाकर के भगवान की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त। उसके लिए शर्त ये है कि उसको किसी वैष्णव की सहायता लेनी पड़ेगी, तब जाके वो ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा को त्याग करके परमेश्वर की सेवा के प्रति आकृष्ट हो पाएगा। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं कि मायावादियों के लिए या ब्रह्मवादियों के लिए ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करना या ब्रह्म में एक हो जाना, लय हो जाना, वो उनका अंतिम लक्ष्य हो जाता है। लेकिन भक्तों के लिए, शुद्ध भक्त के लिए निरंतर भगवान की सेवा में आगे बढ़ना, वो उनका लक्ष्य होता है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके विषय में कहते हैं, आपको लगेगा कि प्रभु जी वापिस वो निराकार का बात है, नहीं निराकार की बात नहीं है। आप एक बार समझने का हम प्रयास करेंगे कि ये ब्रह्मभूत अवस्था होती क्या है और मद भक्तिम लभते पराम होता क्या है, वो दो चीज हमें समझना बड़ा आवश्यक है। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंच जाता है, ब्रह्मभूत अवस्था का अर्थ होता है कि जिसको आत्मा के स्तर पे काम करना शुरू करता है, उसका तीन गुणों का जो दोष था, जो कंटामिनेशन था, वो खत्म हो गया, वो संतुष्ट आत्मा बन जाता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। सो वो एक बच्चे की तरह हो जाता है कि जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे बच्चे के विषय में कहा जाता है ना, ब्रह्मभूत उसको कोई आकर्षण, एक बच्चा होता है उसको अच्छा बुरा उसके लिए दोनों एक समान जैसा ही दिखता है, कि ये व्यक्ति दुष्ट है और ये व्यक्ति अच्छा है, और बच्चे को पूछेगा तो बच्चे के लिए तो दोनों एक जैसा ही है कि कौन दुष्ट है कौन अच्छा है। जैसे श्रीमद् भागवतम में आता है कि जब सुखदेव गोस्वामी वो ब्रह्मभूत अवस्था तक थे, उच्च अवस्था तक, लेकिन जब वो बहुत सुंदर थे और हैंडसम थे, यंग थे, और बिना कोई कपड़े से गुजर रहे थे, जा रहे थे, और उन्होंने सामने एक सरोवर में, वो जहां से जा रहे थे उस सामने एक सरोवर, सरोवर में बहुत सारी लड़कियां स्नान कर रही थी, एंड देवर ऑल, वो उन लोग के भी कोई वस्त्र नहीं थे, लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी को देखा इन लोगों ने तो उनको एक बच्चा ही लगा, वो अर्थात वो ऐसा लगा कि वो ब्रह्मभूत अवस्था पर पहुंचा हुआ है, इसलिए उनसे उनका कुछ फर्क नहीं पड़ा, उनको लज्जा का अनुभव भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही व्यासदेव जो पीछे से आ रहे थे, जो कि गृहस्थ ब्रह्मभूत अवस्था तक नहीं पहुंचे थे सुखदेव तक, तो ऐसे व्यक्ति जब आए तुरंत उन्होंने अपने अपने कपड़े लेकर के अपना शरीर ढक दिया। ये दोनों में क्या अंतर है कि एक ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंचा है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम लोग भी ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंचे और हम सुखदेव गोस्वामी की नकल करें, नहीं। इसका अर्थ ये होता है कि जो ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंचा हुआ व्यक्ति है वो किसी बाह्य चीजों से किसी वस्तु को जज नहीं करता है, वो एक्सटर्नल के साथ जज नहीं करता है। उसका ज्ञान जो होता है उसमें सारी लकड़ी जल खत्म हो जाती है, अर्थात वो सब प्रकार के दोष से मुक्त हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जब ज्ञान परिपक्व हो जाता है तो व्यक्ति मेरी भक्ति को प्राप्त कर सकता है, शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है। अर्थात भक्ति जो है वो मेरी अंतरंग शक्ति का कार्य होता है, इसलिए वो माया शक्ति के प्रभाव में नहीं आता है। तभी इससे क्या समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति अविद्या अर्थात भौतिक आकर्षण, उसको अविद्या मानी जाती है, अगर उसके आकर्षण में है और उसको उससे वो मुक्त हो जाता है अर्थात वो विद्या तक पहुंच जाता है, तो भौतिक आकर्षण से मुक्त हो जाता है, तो विद्या और अविद्या ये दोनों से भक्ति पर मानी जाती है, वो ज्ञान से भी उत्तम मानी जाती है, इसलिए उसको केवला कहा गया है। केवला केवल केवला इसलिए कहा कि वो ज्ञान और कर्म दोनों से मुक्त है। उसके विषय में क्या कहा गया है, ज्ञान कर्म जनावृतम अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म जनावृतम, अर्थात उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, केवल एक ही इच्छा है भगवान की प्रसन्नता, सो दैट इज शुद्ध भक्ति। तो ये ज्ञान और निष्काम कर्मयोग ये दोनों से पर है। और जब हम लभते शब्द का उपयोग करते हैं, अटेन्स, द यूज ऑफ अटेन्स, वो व्यक्ति अटेन्स का अर्थ होता है कि लभते, लभते का क्या होता है अर्थ कि जो कुछ उसने प्राप्त किया था ज्ञान के माध्यम से, वैराग्य के माध्यम से, वो फलीभूत हो करके यहां तक इस अवस्था तक पहुंच सकता है। जैसे समझ लो कि कोई व्यक्ति पैदल चलते हुए पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, इस तरह से दसवें माले मंजरी तक आता है तो वो लभते, वो तब जाके उसको ये प्राप्त होता है। लेकिन उसको परमात्मा का पूर्ण साक्षात्कार नहीं होता है, जब भक्ति की अवस्था तक आता है तभी वो समझ सकता है कि इसको, जैसे मान लो कि भगवान यहाँ पर ऐसा कह सकते थे कि वो परफेक्ट ही परफॉर्म्स डिवोशनल सर्विस, लेकिन उसके बदले भगवान ने कहा ये अटेन्स डिवोशनल सर्विस। हाउ डू अंडरस्टैंड, जैसे मान लो कि एक 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 मटका है, उस मटके में बहुत सारे गेहूं है, बहुत सारा अन्न है, बहुत सारे राइस वगैरह है, उसमें अनाज भरा पड़ा है बहुत सारा, और उस अनाज के भीतर एक हीरा रखा हुआ है या कोई जेल, कोई सोने का टुकड़ा रखा हुआ है गोल्डन, तो अगर वो व्यक्ति उसमें हाथ डालता है तो उसका उद्देश्य है कि उस मटके में ऑलरेडी गोल्ड का टुकड़ा जो हीरा रत्न था वो तो ऑलरेडी था उसके अंदर, लेकिन जब किसी व्यक्ति ने उसमें से ढूंढा तब उसमें से गेहूं ढूंढते ढूंढते उसको एक रत्न प्राप्त हुआ, ऐसे दैट इज द परफेक्शन। एग्जाम्पल क्यों कहा गया अटेन शब्द का उपयोग इसलिए किया लवते शब्द का कि जब तक वो ज्ञान योग या कर्म योग के सिद्धांत को फॉलो करता है तो उसके लिए भी उसको भक्ति का स्पर्श होना आवश्यक है, भक्ति उसके हृदय में ऑलरेडी होनी चाहिए तभी जाकर के वो ये ज्ञान या ब्रह्म की प्राप्ति या परमात्मा की प्राप्ति तक पहुंच सकता है। अगर अन्यथा वो योग नहीं कहा जाएगा, भक्ति योग या ये ज्ञान योग या कर्म योग नहीं कहा जाएगा। तो ही इज गेटिंग अ यू नो गोल्ड, जब सारे सब डस्ट निकल जाते जैसे हीरे हीरा होता है उसको घिसते हो घिसते हो घिसते हो तो बाद में चमकना शुरू करता है, इस तरह से जब ज्ञान और कर्म से मुक्त हो जाती है भक्ति तब फिर वो शाइन करना शुरू करती है, तब फिर उस भक्ति का असली चमक देखने को प्राप्त होता है। सो दैट इज कॉल्ड अटेन्स भक्ति। तो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, तो ऐसा व्यक्ति प्रसन्न आत्मा होता है कि जो इस अवस्था तक पहुंच जाता है। और प्रभा इसके लेकर के ऐसा भी कहते हैं कि जनरली लोग प्रसन्न क्यों नहीं होते, प्रसन्न इसलिए नहीं होते क्योंकि वो भयभीत होते हैं। जैसे आज लोग सब भयभीत है, कोरोना 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 सब लोग भयभीत है। तो भयम द्वितीय विनिवेश अतस्यात, श्रीमद भागवतम कहते हैं कि साक्षात भय जो है वो भी भगवान से भयभीत होता है। और ये भय क्यों होता है, क्योंकि हम शरीर के स्तर पे काम कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि हमें शरीर है इसलिए भयभीत होते हैं। जब तक हम शारीरिक भावना या देहात्म भावना में रहेंगे तब तक हमें ये भय की अनुभूति होने लगेगी, भय रहेगा तब तक आप सुखी नहीं हो सकते, तब तक आप प्रसन्न आत्मा नहीं बन सकते। लेकिन भक्त होता है वो प्रसन्न आत्मा होता है, वो निरंतर भगवान की सेवा में जुड़ा हुआ होता है। श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में भी ऐसा कहा गया है, एवं एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः। भक्ति योग में जुड़ने के कारण भक्त जो होता है वो जैसे कोई बीमार व्यक्ति ठीक हो गया है उस तरह से वो व्यक्ति प्रसन्न मनस हो। जैसे आजकल जो कोरोना वायरस में से जब उसको डिस्चार्ज करते हैं तो उसकी वीडियो शूट होती है, उससे तालियां बजाई जाती है, उसको गले में हार लगाया जाता है, उसको वेलकम किया जाता है। क्यों? वो भी बड़ा खुश होता है, प्रसन्न आत्मा, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, रोग से मुक्त हो गया। लेकिन जो भक्त होता है, हमें एग्जाम्पल के आधार से हम समझ सकते हैं कि जो भक्त होता है वो पहले से ही प्रसन्न आत्मा होता है, उसको पता है कि मेरे शरीर नहीं, एंग्जाइटी होती ही नहीं। व्हाट काइंड ऑफ एंग्जाइटी, एंग्जाइटी होता क्या है, भक्त को पता ही नहीं होता है। भक्त एंग्जाइटी तब होती है, चिंता तब होती है कि भाई मैंने इतना प्राप्त किया है वो चला जाएगा तो अपशोक होगा, या फिर मुझे है नहीं, मेरे पास उनके पास ये मर्सिडीज है, ये ऑडी है, मेरे पास नहीं है, तब शोक होता है या हैंकरिंग होती है, मुझे भी चाहिए, मेरे पास भी होना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि वी हैव नो बिजनेस, वी हैव नो प्रोफेशन, हम हम तो यहाँ, हमें तो यहाँ तक ये भी नहीं पता होती कि आज शाम को प्रसाद में क्या मिलेगा और कल हमें क्या मिलेगा। प्रभुपाद एक स्टॉक होम में ये बता रहे थे, हम ऐसी अवस्था में तो हमें कोई एंग्जाइटी नहीं है, वी हैव नो एंग्जाइटी, शाम को मुझे मिलेगा क्या, कल मेरे मेरे खाते में कोई बैलेंस ही नहीं है, मेरे पास कोई धन ही नहीं है। अब धन नहीं है, कुछ एंग्जाइटी कहाँ से। जैसे खोला बेचा श्रीधर, खोला बेचा का श्रीधर का जो घर था उसमें छत नहीं थी, उसके पास एक ही बर्तन था वो भी टूटा हुआ, अगर चोर चोरी करना है तो भी वो चोरा के ना ले जाए, और उसके पास एक ही धोती थी जिसमें 11 छेद, अब उसको क्या एंग्जाइटी होगी। बट इज द मोस्ट सेटिस्फाइड पर्सन, वो सबसे संतुष्ट व्यक्ति है क्योंकि प्रसन्न आत्मा, वो इज भक्त, इज शुद्ध भक्त, उनको पता है कि कृष्ण सब सब कुछ मेरी आवश्यक हर एक वस्तु कृष्ण भेज देंगे। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो वैष्णव लोग न सोचते न काम सोचते। तो एग्जाम्पल देते हैं कि समझ लो मेरे पास किसी ने मुझे $1,000 दिए थे और कोई दूसरा कोई आकर के वो चोरी करके चला गया, कोई हमारे पास आया मिक्सअप हुआ और चला गया, तो हम उसके लिए ज्यादा दुखी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम सोचते कि कृष्ण ने हमें दिया था, कृष्ण ने हमसे छीन लिया। सो नो न सोचती न कांक्षती, ही इज ऑलवेज हैप्पी, फुल्ली हैप्पी, वो डिस्टर्ब नहीं होता। समस्त सर्वेषु भूतेषु, सबके प्रति अपनी कृपा बांटने के लिए वो तैयार रहता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंच सकता है। मैं भक्ति में लगते दिस इज नॉट इजी, ये सरल नहीं है, लेकिन ये अवस्था तक हमें पहुंचना है, ये हमारा लक्ष्य है। सो आई होप कि आई स्पोक अ लॉट, मे बी आप इसको समझ सकते हो कि is there any question with this or we can go further with the next important sloka.
Prabhuji, a question is.
Yes.
Prabhuji, ये जो अभी हमने श्लोक किया तो अभी आपने कंक्लूजन में जैसे बताया कि हमें यानी कि जो निष्काम प्लेटफॉर्म पे है उनको बता रहे हैं कि वो ऑलरेडी प्योर डिवोटीज हैं, उनको मतलब आपका वो कहने का मतलब किसके लिए था कंक्लूजन में कि हमें इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचना है, यानी भक्तों को आपने? हाँ,
फॉर एवरीवन,
सॉरी प्रभु,
फॉर एवरीवन, निष्काम कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, कोई भी हो, प्रभुपाद अधिकतर केस में प्रभुपाद भक्तों को इंगित करके ही बोलते हैं।
तो नहीं प्रभु जी, तो ये मैं जैसे ये पूछने के लिए मैंने ये इसीलिए पूछा कि जैसे जो शुद्ध भक्त हैं, जो मतलब ऑलमोस्ट वो प्रेम भक्ति नहीं तो भी उसके नीचे वाले रागानुगा भक्ति पे है अगर प्लेटफॉर्म पे, तो वो उनमें ये सब क्वालिटीज ऑटोमेटिक पहले मतलब विकसित हो ही जाती अपने आप हो गई होंगी ना?
हाँ, ये प्रोपोर्शनली हो सकती है, जरूरी 100% हुई हो।
हाँ, हाँ, अच्छा,
भक्ति का मार्ग ऐसा ही है, जैसे आप अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हो,
प्रकाश
तो ट्रांजिशन स्टेज में होते हैं।
हाँ,
तो अधिकतर केस में सब ट्रांजिशन स्टेज में ही होते हैं,
मतलब वो मतलब चेंज कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे जितना जितना जिसके प्रकाश के करीब जाएंगे उस हिसाब से ये क्वालिटीज अपने आप डेवलप होती
हैं। यस, उजागर होना, जैसे आप हीरा है घिसते जाओ शाइन करेगा। हाँ, और तो घिसो और शाइन करेगा।
और प्रभु जी, जो केवला शब्द है ये किस श्लोक में है प्रभु जी? इन दोनों आगे के 55 और 54 में तो नहीं
दिखता? नहीं, वो कोई श्लोक में नहीं, वो तो भक्ति को केवला बोला जाता है
के भक्ति को। और प्रभु जी, एक अष्टकम भी है केवला अष्टकम, तो उसका मतलब क्या है केवला अष्टकम?
आई डोंट नो, मैं आई नीड टू चेक वंस केवला
अष्टकम।
और कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण प्रभु जी।
यस
प्रभु जी, जिसने आपने बोला था कि हमें सन्यास की तरफ बढ़ना चाहिए, मतलब हमारी वृत्ति वैसी होनी चाहिए, पर लाइफ में अगर प्रैक्टिकल देखे जाए तो डे टू डे लाइफ में एवरीडे कुछ न कुछ कुछ न कुछ चैलेंजेस आते ही रहते हैं, तो उसको हम किस तरह फेस कर सकते हैं?
यस, अगर समझ लो कि कोई व्यक्ति बीमार है, आजकल तो कोरोना शब्द से ही डर लगता है लोगों को, लेकिन हम एग्जांपल यूज कर रहे हैं उसका, कि अगर समझ लो कोई व्यक्ति का वो अगर उसको कोरोना के सिम्टम है तो इसको खांसी आती है, फिर उसको बुखार आता है, या उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ये सब कॉमन सिम्टम बताए गए, दैट्स फाइन। अभी कोई व्यक्ति कहता है कि प्रभु जी कभी खांसी आती है, प्रभु जी डे टू डे लाइफ में कभी बुखार आता है, तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम बीमार हैं। तो हमारे लाइफ में एवरीडे जो अलग अलग सिचुएशन आती है, सिचुएशन तो यही रहने वाली है, सिचुएशन नहीं बदलने वाली। बदलना किसको है? हमें बदलना है। हमें कैसे बदल सकते हैं? हम रोगी अवस्था से हमें अपने आप को मुक्त करना है। और ये रोगी अवस्था क्या है? अपने आप को कर्ता मानना, भगवान को स्वामी नहीं मानना, इंद्रिय भोग के लिए कार्य करना, शरीर की भावना पे रह के कार्य करना, ये हमारी रोग अवस्था है। और इससे अगर आप मुक्त होंगे, सिचुएशन तो ऐसे ही रहने वाली है। एक्चुअली सिचुएशन जो होती है वो तो संसार का नियम है कि वो दुखालय है, तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम ही आएंगे। लेकिन आप अपने आप को जब वैक्सीन ले लेते हो, यहाँ पर समझ लो कोई ऐसी रस्सी आती है कोरोना की, फिर आप जाओ कहीं पर भी तो आपको कुछ नहीं होने वाला, इस तरह से अगर आपने किसी साधु संगत या शुद्ध भक्ति या यू नो पूर्ण शरणागति का आपने रस्सी ले लिया है, तो इसका परिणाम यह आएगा कि सिचुएशन आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी, आप परेशान नहीं होंगे, आप माया से आकर्षित नहीं होंगे। सो दिस शुड वी शुड अंडरस्टैंड दिस। और कोई प्रश्न? ओके, सो वी कैन गो विथ अनदर इम्पोर्टेंट श्लोक।
प्रभु जी, सेकंड चैप्टर और ये 18 चैप्टर में तो बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं, बहुत मुश्किल श्लोक हो जैसे होते हैं।
या
बट ये ज्ञान कर्म ये जहाँ मुश्किल नहीं, आई मीन इट रिक्वायर्स सम टेक्निकल नॉलेज, इट रिक्वायर्स फिलोसॉफिकल गुड अंडरस्टैंडिंग एंड इट रिक्वायर्स भक्ति ऑल्सो, सो इट बिकम्स लिटिल कंफ्यूजिंग।
या बट इसको एक बार आप टेक्निकली समझ लोगे, यही हमारा उद्देश्य, एक बार टेक्निकली इसको समझ लो,
समझ हाँ,
उसके बाद फिर ये सब इजी हो जाता है ना, जैसे वो अनफोल्ड हो जाता है कुछ। और ये स्वाभाविक है
हाँ, क्योंकि सेकंड चैप्टर में भी ये सब बहुत था, ये सब चीजें थे एक साथ, और अब ये 8th भी तो सिमिलर ही है, तो फिर वो 18th भी, तो फिर वो सब वापस रिपीट हो रहा है अभी।
या क्योंकि जनरली क्या है कि ये एक योगा लेटर का ज्ञान योग का जंक्चर है, तो वहां पर जनरली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है माइंड
में,
कैसे समझे इसको।
प्रभु जी, अगर टेक्निकली तो आपने हमें योगा लेटर दिया उसमें समझ आ जाता है, पर जैसे ही हम परपोट पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का, तो लगता है ये भी तो भक्ति बता रहे हैं और इसमें ज्ञान का है, ये तो भक्ति में भी होता है, तो वो एकदम मतलब वो डिलाइनेट करना थोड़ा मतलब अगर जैसे आप आपसे प्रश्न नहीं पूछेंगे तो हम तो नहीं समझ पाएंगे।
यहाँ पर हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि प्रभुपाद की जो तात्पर्य है, प्रभुपाद हाँ। हरेक तात्पर्य में भक्ति योग की महत्ता को
रीइंस्टेट करते हैं हर परपोट में।
यस, अगर वो नहीं करते तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बार बार प्रभुपाद भक्ति योग को प्राधान्य देते हैं, और साथ साथ में हम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से भक्ति योग को समझ सकते हैं इसको भी प्रभुपाद बताते हैं।
Yes.
So therefore ये हो सकता है कि आपको कभी समस्या हो सकती है कि प्रभु ये ज्ञान वाला चक्कर जो है ना वो हमेशा दिक्कत करता है, याद नहीं
yes, ज्ञान ही सबसे ज्यादा।
या सो वी शुड ओपन इट, जब तक समझ नहीं सकते तब तक उसको क्लैरिफाई करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मैं कि अगर आपका प्रश्न है तो पूछिए हमेशा। यस,
और प्रभुपाद जी का नॉर्मली निष्काम कर्म योग इट इज वो उसको पढ़ने के बाद वो प्रभु जी भक्ति योग जैसा ही लगता है ऑलमोस्ट, शायद है फर्क तो होगा, पर वो पढ़ने के बाद वो ऐसा ही लगता है कि ये हमारे भक्ति योग की बात कर रहे हैं।
या एक मेजर फर्क है, निष्काम कर्म योग में कर्म के हाँ। प्रति आसक्ति होती है, और भक्ति हाँ। योग में कृष्ण के प्रति
आसक्ति। थैंक यू, थैंक यू।
और क्वेश्चंस? ओके, सो टेक्स्ट नंबर 56 55। यस,
भक्त्या माम अभिजानाति यावन यच्छामि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदन अंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है, जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत से भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है।
अब भगवान बताते हैं कि वो जो व्यक्ति मद भक्तिम लभते पराम, उसकी बात हुई तो ये डिवोशन प्राप्त करने के पश्चात वो करता क्या है, जो लभते करता है, तो लभते के बाद होता क्या है? तो भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति भक्त्या माम अभिजानाति, जो मुझे समझ सकता है भक्ति के माध्यम से, और कैसे समझ सकता है, यावान यच्छामि तत्वतः इन फुल इन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एज आई एम, जैसा हूं मैं वैसा, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यच्छामि तत्वता शब्द पहले कहीं आया था? यो वेति तत्वता और
त्यक्त्वा जेहं पुनः
और कोई तत्वतः बहुत सारे तत्व थे ना गीता में तो
हरे कृष्ण
जन्म कर्म च में दिव्यम
हाँ ठीक है और कोई
हाँ वो सिक्स चैप्टर वाला था ना योगी का उसमें भी आता है ना तत्व का हाँ।
कोई श्लोक याद है किसी को
योगी नाम अपि सर्वेशा
प्रभु जी ये भी है तद्वितीय प्राणी पाते ना
हाँ हाँ उसमें भी आता है तत्वता फिर
वेति यत्र न चैवम स्थितश्चलति तत्वतः
अच्छा गूगल कर लिया आपने कौन सा था वो
इट इज 6.20
अच्छा और क्या क्या बताता है गूगल
एतं विभूतिं योगं च माम यो वेति तत्त्वतः
ओके और
7.3
मनुष्याणां
सहस्रेषु
कश्चित् यदति
सिद्धते यततां अपि सिद्धानां कश्चिमा वेति तत्त्वतः
हाँ तो तत्त्वतः शब्द का अर्थ हमने एक बार आपको पहले एक बार बताया था कोई बता सकता है तत्त्वतः शब्द का अर्थ
फैक्ट
वो तो वर्ड टू वर्ड वो भी डिक्शनरी गूगल वाला आंसर नहीं चाहिए हमें अंडरस्टैंड
मतलब तत्वता एज इट इज अकॉर्डिंग टू द सक्सेशन डिसिप्लिन सक्सेशन
भगवान को संपूर्ण रीते जानना
हरे कृष्ण
बोलिए
कृष्ण भगवान को पूर्णतः जानना
और कुछ
भगवान को स्वयं भगवान के अलावा और कोई नहीं जान सकता हम जानने का प्रयास कर सकते हैं यह है तत्वता जानने का है
और कुछ तत्वता को लेकर के
टू नो हिम एज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड
ठीक है और कुछ और एक चीज हमने बताई थी इसलिए वहां वेट कर रहे हो उसका कौन बताता है वो
पता नहीं प्रभु जी बट तत्वता का मीनिंग एक हो सकता है कि पूरा कन्विक्शन हो और मतलब पूरा मतलब हमें सब कुछ मतलब हम पूरा एज इट इज एक्सेप्ट करें और हमें सारा पूरा ज्ञान हो जैसे मैंने आपसे मतलब जब ये वाला कर रहे थे ना कि जन्म कर्म च में दिव्यम वाला तो मैंने पूछता कि प्रभु जी तो वो तो हमें पता है कि भगवान का जन्म कर्म दिव्य है तो फिर तो रीबर्थ ही लेना पड़ेगा तो आपने कहा कि तत्वता का मतलब है कि उसमें सब कुछ आ जाता है और पूरा कन्विक्शन होना चाहिए स्ट्रॉन्ग कि हाँ ऐसा हुआ था मतलब कई बार सब कुछ का मतलब हमें पूरा कन्विक्शन होना चाहिए स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि हाँ ये सही है कि भगवान की मतलब इतना उनका ऑपुलेंस है और इस तरीके से उनका दिव्य है जन्म और कर्म सब कुछ दिव्य है
और कुछ
प्रभु जी तत्वता में एक दो मतलब एक 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 ये है कि जैसे भगवान को ब्रह्मेति परमात्मेति और भगवान इति ये तीनों कॉन्सेप्ट में भगवान एब्सोल्यूट ट्रूथ इज इंक्लूडिंग ऑल दीज थ्री और okay. ये एक है और दूसरा जैसे जैसे हम हमें मतलब अर्जुन और बहुत सारे ऋषि मुनि जैसे अर्जुन ने एक चैप्टर में बताया है कि असित देवलो और नारद मुनि ये सब भगवान को एक्सेप्ट करते हैं कि वो ही सुप्रीम है और कोई नहीं ब्रह्मा जी तो ये सब एक्सेप्ट करते हैं लॉर्ड शिवा ब्रह्मा जी तो और क्योंकि वो स्पिरिचुअल मास्टर के थ्रू हमें भी वो एक्सेप्ट करना है वैसे कितना तो
स्टिल वेटिंग फॉर वन आंसर तत्व तक
नो वन इज सुपीरियर टू सुप्रीम और कैन बी इक्वल टू सुप्रीम
आदि सेवक प्रभु यस
इन रियलिटी
ओके इन रियलिटी ओके
और इन रियलिटी एज ही इज इन रियलिटी
ठीक है
प्रभु जी हिंट दीजिए कुछ
प्रभु जी
हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं सोच रहा हूँ डिटेल में जानना वही है तत्वता।
डिटेल में जानना, डिटेल डिटेल मीन सारे पैराग्राफ पढ़ने का तात्पर्य का दैट इज डिटेल और व्हाट डिटेल
सरेंडर।
एनीवे
सत्यता को जानना, सत्य को जानना।
फाइन, सो तत्वतः वर्ड को अगर आप केवल प्रभुपाद के सिनोनिम में देखेंगे तो शायद एग्जैक्टली नहीं समझ आएगा, लेकिन अगर आप पूरा पिक्चर देखोगे तब आप समझ पाओगे कि व्हाट प्रभुपाद मीन विद दिस, कि तत्वतः जानने का अर्थ होता है कि भगवान को उनकी सभी शक्तियों के साथ समझना, टू अंडरस्टैंड कृष्णा विथ ऑल हिज पोटेंसीज, इंटरनल बहिरंग ऑल, सब सारी शक्तियां, बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति, संधि शक्ति, संविध शक्ति, आराधनीय शक्ति, कृपा शक्ति, प्रभुता शक्ति, सब जितनी शक्ति है सारी शक्तियों के साथ भगवान को समझना, दैट इज तत्वतः। सो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड वेन एवर वी टॉक अबाउट तत्वतः, जब कभी भी भगवान गीता में तत्वतः कहते हैं इसका अर्थ यही होता है, पर्टिकुलरली यहाँ पर बताया गया है कि तत्वतः का अर्थ होता है कि भगवान को उनकी सभी शक्तियों के साथ समझना, दैट इज तत्वतः। सो आई थिंक वी ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट बट आई एम जस्ट रिमाइंडिंग दिस पॉइंट। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इसके विषय में कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति को प्राप्त करता है सो वो करता क्या है, तो भगवान यहाँ पर जो बताते हैं विशेष करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस विषय में कहते हैं कि दिस इज आंसर्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडिया इन द वर्स बिगिनिंग भक्ति, क्या ओनली बाय भक्ति, केवल भक्ति के द्वारा ज्ञानी या समझ लो किसी भी प्रकार का व्यक्ति वास्तव में मुझे समझ सकता है, अन्यथा कोई उपाय है ही नहीं, वो उसका विद्या का समझ लो ज्ञानी है, उसका विद्या का इन्फ्लुएंस, उसका ज्ञान का इन्फ्लुएंस जब समाप्त हो जाता है तब जाकर उस आयुज्य मुक्ति तक पहुंचता है, अर्थात मुझ में वो विलीन हो जाने की स्थिति तक पहुंचता है। अब सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने वाले में भी प्रकार होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि केवल भक्ति नहीं चाहिए उनको, केवल ज्ञान ही चाहिए, तो उनको वो सायुज्य मुक्ति के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है और बहुत ही कष्टमय होता है उनका जीवन और वो बहुत ही पीड़ित होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि ये समझते हैं कि जब तक भक्ति का स्पर्श नहीं होगा तब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, वो लोग ऐसा समझते हैं, तो ज्ञान मिश्र भक्ति का प्रयास करते हैं, तो भगवान का कोई काल्पनिक स्वरूप बना देते हैं और उसको माया से जोड़ देते हैं, क्योंकि भगवान का शरीर जो है वो माया से जुड़ा हुआ है। वो लोग योग की कल्बिनेशन तक पहुंच सकते हैं, अर्थात पूर्णता तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि भगवान का शरीर नश्वर है या मिथ्या है या माया से बना हुआ है, वो लोग गिर जाते हैं, अर्थात वो लोग अपने आप को मुक्त मानना शुरू कर देते हैं, बट दे आर नॉट मुक्ता, वो विमुक्त मानिनस। इसलिए अभी यहाँ पर हमें आपको लगेगा क्या कंफ्यूजन है, यहाँ कंफ्यूजन ये कुछ नहीं है, केवल यहाँ पर यही बताया गया है कि कुछ लोग भक्ति योग का उपयोग करके भगवान के पास जाना चाहते हैं और कुछ लोग केवल ब्रह्मवादी होते हैं और भक्ति को स्पर्श नहीं करना चाहते, तो हो सकता है कि दो अलग अलग हो लेकिन दोनों ही मायावाद सिद्धांत को अनुसरण करते हैं, इसलिए दोनों ही कष्ट भुगत रहे, एक ब्रह्मवादी है और एक मायावादी है, दोनों का आज जो जीवन है वो कष्टमय होता है और दूसरा वाला जो होता है जो मायावादी होता है वो तो गिर ही जाता है। सो भगवान ये कहते हैं श्रीमद् भागवतम के फिफ्थ कैंटो में ये बताया गया है, कि ईच ऑफ द फोर सोशल ऑर्डर्स हेडेड बाय द ब्राह्मणास वाज बोर्न थ्रू डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मोड्स ऑफ नेचर फ्रॉम द फेस आर्म्स थाइज एंड फीट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इन यूज दिस द दस द फोर स्पिरिचुअल ऑर्डर्स वेयर ऑल्सो जनरेटेड इफ एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फोर वर्णास और फोर आश्रमास फेल टू वर्शिप और इंटेंशनली डिसरिस्पेक्ट द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड they will fall down from their position into hellish state of life. तो जो कोई भी व्यक्ति चाहे वो ब्रह्मवादी हो या मायावादी हो अगर अपने आप को मुक्त मानता है वो व्यक्ति गिर जाएगा अगर वो परमेश्वर की सेवा में अनुरक्त नहीं होता. So भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो केवल भगवान की अचिंत्य शक्ति के माध्यम से ही देखा जा सकता है. इसका भी वर्णन भगवद गीता में था कि नमाम दुष्कृतिनो सॉरी व्हाट इज द श्लोक कि एवरीवन कैन नॉट सी मी. याद नहीं आ रहा है श्लोक आपको?
प्रभु जी किस चैप्टर में है?
नो दैट आई डोंट नो.
कौन सा श्लोक प्रभु जी?
ऐसा कोई श्लोक बताइए भगवद गीता में जहाँ भगवान ऐसा कहते हैं कि मुझे सब कोई नहीं देख सकता.
नाहम प्रकाशो सर्वस्य योग माया समावृत्त.
नाहम प्रकाशो सर्वस्य योग माया समावृत्त. मूढ़ो यम ना भी जाना थी. मूढ़ व्यक्ति मुझे नहीं देख सकते. मैं सबके सामने वो केवल मेरी अचिंत्य शक्ति से प्रकट होता हूँ. अचिंत्य शक्ति से प्रकट होता हूँ ऐसा कोई श्लोक है क्या?
प्रभु जी व्हाट डिड यू आस्क नाउ?
अचिंत्य शक्ति से प्रकट होते हैं ऐसा कोई श्लोक है? ओके नो प्रॉब्लम. सो भगवान कहते हैं कि मैं अपनी निजी माया से संभवामी आत्म माया. मैं अपनी निजी माया अपनी योग शक्ति से प्रकट होता हूँ, अपनी शक्ति से प्रकट होता हूँ और इसलिए मूल व्यक्ति नहीं समझ सकते कि मेरा जो स्वरूप है वो मनुष्य जैसा है ऐसा वो लोग मान लेते हैं. मूड लोग ऐसा भी कोई श्लोक था क्या कि लोग ऐसा मानते हैं कि मैंने मनुष्य शरीर धारण किया है ऐसा कोई श्लोक है? सो मैनी श्लोक. अब जानती
रिपीट करेंगे?
अब रिपीट नहीं होगा. अब सुनो. अज्ञानंती माम मूढ़ मानुषिम तनुमाश्रिता. मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है क्या?
नहीं प्रभु जी.
Then why is there, when there is a requirement of repetition?
प्रभु जी, we did not listen.
हाँ, that's the problem. So, भगवान कहते हैं कि मैं अपनी योग शक्ति से प्रकट होता हूँ और मूर्ख लोग मुझे ऐसा मानते हैं कि मैंने मनुष्य शरीर धारण किया है. भगवान की शक्ति के बिना कोई भगवान को समझ ही नहीं सकता. जैसे भगवान सच्चिदानंद विग्रह है और वृंदावन में यमुना के तट पे कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े है. बट दिस थिंग दिस मायावादीज कैन नॉट अंडरस्टैंड. वो लोग इस चीज को नहीं समझ सकते क्योंकि वो लोग श्रुति का उपयोग करेगा, शास्त्र का उपयोग करेगा और बताएंगे कि प्रकृति क्या है. माया माया को प्रकृति गिनते हैं और माया को धारण करने वाला प्रकृति को धारण करने वाला वो भी माया के अंडर में है. वो लोग ऐसा मानते हैं. तो इसलिए भगवान यद्यपि माया के स्वामी है लेकिन वो माया से पर है. इसलिए जो ज्ञान मिश्र भक्ति करते हैं, जो भक्ति मिश्र ज्ञान करते हैं, इसको भी हमने एक बार चर्चा किया था पहले अगर आपको याद हो. एक होता है ज्ञान मिश्र भक्ति और भक्ति मिश्र ज्ञान। तो वो लोग क्या करते हैं कि भगवान के स्वरूप को सच्चिदानंद मानते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अंत तो गत्वा भक्त भक्ति योग तक पहुंच सकते। सो एक होता है जो सायुज्य तक अपने आप को सीमित कर देता है, जो हमने पहले आपको चर्चा किया था। दूसरे होता है कि जो शुद्ध भक्त की संगति से शुद्ध भक्ति की ओर पहुंच जाता है, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी इत्यादि। सो दिस पॉइंट वी वांटेड टू एस्टेब्लिश दैट देयर आर पीपल जो ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद वो लोग भक्ति योग में जुड़ते हैं। तो भक्ति योग में जुड़ने वाला जो भक्त होता है, दे आर हायर एंड दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि आफ्टर अटेनमेंट ऑफ ब्रह्मभूत अवस्था, वेयर इज दैट इन हिंदी
लास्ट पैराग्राफ है प्रभु जी,
आप पढ़िए
आफ्टर इंग्लिश में प्रभु।
यस एनीवे कोई भी लैंग्वेज।
After attainment of the Brahmabhuta stage of freedom from material conceptions, devotional service begins by one's hearing about the Lord. When one hears about the Supreme Lord, automatically the Brahmabhuta stage develops, and material contamination, greediness, and lust for sense enjoyments disappear. As lust and desires disappear from the heart of a devotee, he becomes more attached to the service of the Lord. And by such attachment, he becomes free from the material contamination. In that stage of life, he can understand the Supreme Lord. He can understand the Supreme Lord. This is the statement of Srimad Bhagavatam also. After liberation, the process of bhakti or transcendental service continues. The Vedanta Sutra confirms this.
Okay. So, शिव प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के 6 कैंटो में ऐसा बताते हैं कि जिस तरह से जो हवा होती है वो सुगंध वाले बगीचे में गुजरता है, वहां से पास होता है तो वो आपके नाक में आता है तो ऑटोमेटिकली आपको उसको सुगंध आती है। सो ये भक्ति जो है वो चेतना है, वो भक्ति के मार्ग में भक्ति से प्रभावित हुई चेतना है जो भगवान का अस्तित्व तुरंत समझ पाता है सबके हृदय में। He can understand. It is not that he has to mechanically feel it. This is there already. But he just start feeling it. He understands it. ये दुर्विग्नियम है अवश्य ही, समझना बहुत मुश्किल है। दुर्विग्नियम इतना आसान नहीं है इसको समझना, लेकिन जो मेथड को फॉलो करता है वो इसको समझ सकता है। यहाँ तक कि इवन आई आस्क यू अभी, अगर आपको हमें ये प्रश्न पूछे कि ये 54-55 ये श्लोक की चर्चा जब हम आपसे कर रहे थे, आप में से कितने भक्त थे कि जिनको शायद नींद आने लगी, जिनको यू नो ऐसा लगा कि अब तो कुछ ऊपर से जा रहा है, पता नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है। दिस इज पॉसिबल, हो सकता है आप में से कहीं होंगे ऐसे कि इनको थोड़ा बोरिंग लगने लगा होगा। But this is durvignyayam, अर्थात difficult to understand. इसको समझना बड़ा आवश्यक होता है, लेकिन इसको विधि से समझना पड़ता है। जब हम शुद्ध भक्ति के माध्यम से भगवान के उन्मुख होते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इसके आधार से अगर हम करते हैं तो क्या परिणाम आएगा? ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में स्वच्छ ये ज्ञान प्रकट हो जाने शुरू करेगा। विश्वनाथ चक्रवी ठाकुर कहते हैं कि श्रवण और कीर्तन की विधि हमारे हृदय में हमारा जो सुसुप्त शुद्ध भक्त उसको उजागर करता है, अर्थात हम शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ते हैं। और जब ये प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहते हैं तो फिर हम भगवान के नाम रूप गुण लीला इन सबको अप्रिशिएट कर पाएंगे। अर्थात शुद्ध भक्ति के माध्यम से कितने भी संकट हमारे लाइफ में आए, कितने भी रुकावट हमारे लाइफ में आए, हम उन सबको पार कर सकते हैं सबको। सो क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली भगवान के संपर्क में आ जाता है वो भक्त। इसलिए इस जो भी इम्पेरिमेंट हमारे लाइफ में हो वो भगवान की अलग अलग शक्तियां, ये मान करके भक्त चलता है। भक्त आतुर होता है, ईगर होता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए, तब फिर वो भगवान की शरणागत होता है। दिस इज वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, इसलिए कहा गया है कि वेदों के माध्यम से इसको समझना बहुत दुर्लभ है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट जिसके पास भक्ति नहीं है। लेकिन दुर्लभम अदुर्लभम, अदुर्लभम का अर्थ होता है कि एकदम इजी, वेरी इजी भगवान को समझना। कैसे? आत्म भक्तों, उनके भक्तों के माध्यम से। अगर आप किसी भक्त की शरण में जाते हो और किसी भक्त की सहायता लेते हो तो ये एकदम आसान हो जाएगा, अन्यथा ये कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, आप समझ नहीं पाएंगे। सो जिस तरह से सन, सूर्य होता है उसको आप समझ सकते हो उसके प्रकाश के आधार से, इस तरह से कृष्ण को भी भक्ति के आधार से ही समझ सकते हैं। अगर आप सूर्य को अंधकार के आधार से समझने का प्रयास करोगे तो आप सूर्य को कभी नहीं समझ पाओगे। इस तरह से अगर आप भक्ति को धर्म अर्थ काम मोक्ष इसके आधार से अगर आप भगवान को समझने का प्रयास करोगे तो आप भक्ति कभी भक्ति को समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए भक्ति भक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ माध्यम है भगवान को समझने के लिए। That we should try to understand. This way we can get the success of, और इसका एक ही आसान तरीका है, quote the, take shelter of the any devotee, इसे शुद्ध भक्त की शरणागत होना, यही इसका एकमात्र साधन है। So anyway, any questions with this?
प्रभु जी, I have one question. अभी आपने बोला शुद्ध भक्ति के माध्यम में जो आता है वो संकट, कोई भी संकट को पार कर सकता है, पर शुद्ध भक्ति में अंदर जो रहता है तो उसको संकट आएगा ही क्यों, क्योंकि वो तो ऑलरेडी भगवान के शरण में होता ही है ना।
भगवान परीक्षा लेते हैं उसकी, और सारे कर्म जो होते हैं, जैसे जब तक वो भौतिक शरीर धारण किया हुआ है तब उसको ये अनुभूति तो कराएंगे ना कि वो मटेरियल वर्ल्ड में भौतिक शरीर धारण किए हुए है। इसलिए अगर वो नष्ट प्राय बोला है भगवान ने, सारे उसके संकट नष्ट कर देंगे तो चांसेस है कि वो गिर जाए यहीं पर, क्योंकि अभी तो वो माया के वातावरण के आसपास नहीं है, तो इसलिए उसको थोड़ा बहुत संकट मिलता रहता है और थोड़ा बहुत उसकी कसौटियां होती रहती है ताकि वो भक्ति के मार्ग को छोड़ ना दे, ये उद्देश्य है।
ओके, जुड़े रहने के लिए, अदरवाइज चांसेस ऑफ फॉल डाउन होते हैं इसके हिसाब से।
यस, बिकॉज माया बड़ी प्रबल है। और कोई प्रश्न?
इवन फॉर शुद्ध भक्त माया प्रबल रहता है ऐसा?
यस, क्योंकि प्रभुपाद खुद ही प्रार्थना करते थे भगवान को, ये तो उस पर शुद्ध भक्त है, वो हमेशा प्रार्थना करते थे कि हे कृष्ण कृपा करके माया से हमेशा मेरी सुरक्षा करना। क्यों ऐसा? क्योंकि ये स्थान ऐसा है मटेरियल वर्ल्ड जहाँ पर तीन गुणों का प्रभाव है, हमारे आस पास सभी ऐसे लोग से घिरे हुए है कि जो लोग माया से प्रभावित है, तो ऐसी सिचुएशन में जाओगे, अगर किसी अस्पताल में जाओगे तो आपको सब वो पीपी क्या पहनना पड़ता है, पीपी पहनना पड़ता है, तो ऐसे वो माया का वो पहनना पड़ता है माया से सुरक्षित होने के लिए कृष्ण भक्ति का, अदरवाइज वी कैन आल्सो फॉल विक्टिम ऑफ माया।
ओके प्रभु जी,
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भक्ति मिश्र ज्ञान एंड शुद्ध भक्ति दोनों में क्या अंतर है?
जिसमें एक में ज्ञान मुख्य लक्ष्य होता है, दूसरे में भक्ति मुख्य लक्ष्य होता है।
अच्छा, तो भक्ति मिश्र में पहले भक्ति आता है तो भक्ति मेन है ऐसा नहीं माना जाता है?
नहीं, ज्ञान मिश्र भक्ति होता है उसमें भक्ति श्रेष्ठ लक्ष्य होता है, और भक्ति मिश्र ज्ञान होता है उसमें ज्ञान को वो लक्ष्य होता है और भक्ति का सहयोग लेने का प्रयास करते है इसलिए।
और क्योंकि वैसे भी अगर भक्ति योग में भी उसको अच्छे से समझना है तो ज्ञान का सपोर्ट तो लेना ही पड़ता है ना।
यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर शुष्क ज्ञान की बात हो रही है। शुष्क
अच्छा,
ज्ञान का होता है कि केवल आत्मा शरीर का अंतर बस।
ओके ठीक है जी।
और कोई प्रश्न? Okay, so Daiviram Prabhu, you have taken the recording. So
yes, Prabhuji.
if you wish, you can upload it and you can cut it as per requirement.
Okay. Then
I have also recorded it. So we'll discuss this later. So we'll meet you again short. Okay. So sooner.